ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर वन का सेकंड पार्ट अभी हम आज सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिए मैं जो बता रही हूं आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें डेटा की विविधता समझाता है कि इतने परसेंटेज वाले विद्यार्थी कितने हैं, फिर इतने परसेंटेज वाले विद्यार्थी पीजी में कितने, इतने परसेंटेज वाले विद्यार्थी पीजी में कितने, ये विविधता दिखाई। परंतु फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें एवरेज नहीं बताती। एवरेज मूल्य सिंगल मूल्य होता है, एवरेज मूल्य उस सीरीज का पार्ट नहीं होता, किंतु सीरीज को टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर, तो वो तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं मिलता। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कंडेंस फॉर्म में, लार्ज डेटा को कंडेंस फॉर्म में रखना सिखाता। कल जो आपने आपकी किताब में उदाहरण है, स्लाइड में भी देखा कि 100 विद्यार्थी मैथ्स के और उसके मार्क्स दिखाए हैं, वो जो बिखरे हुए मार्क्स का जो सेट था वो आपको परीक्षा में ना लिखना है ना याद करना है, पर उसका जो कंडेंस फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, वो आपको एग्जाम में अगर उदाहरण देना है तो दे सकते हैं उससे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का कोई भी टॉपिक आपको समझाना है तो आंकड़ों के साथ समझाना है, इसलिए वो समझाने के लिए एक साधन है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू भी जानना, उस डेटा की समझना आवश्यक होता है, और वो एवरेज को मापने का हिंदी में केंद्रीय, सेंट्रल वैल्यू, केंद्रीय का मतलब सेंट्रल वैल्यू, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अर्थात उस लिस्ट में, डेटा के उस लिस्ट में सेंट्रल वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू क्या है। अभी मैं इसके पर्यायवाची शब्द बताती हूं आप लोगों को। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल लोकेशन, मीन, मोड, मीडिया, मीडियन, ये सब एक ही नाम है। तो जब आपको हॉस्टल के 50 विद्यार्थी हैं और आपको ये जानना है कि उनका मासिक खर्च क्या है, तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। सही बात है ना। उसी तरह एक गारमेंट की फैक्ट्री है और उन्हें शर्ट बनाने हैं, तो शर्ट बनाने हैं तो उनको एवरेज साइज ढूंढनी पड़ेगी ना, कि भाई किस नाप के ऑन एन एवरेज हम शर्ट की साइज बनाएं ताकि बायर्स को, कस्टमर को उस अनुसार खरीद सके। तो एवरेज का नाप हर जगह काम आता है और उसको नापने का स्टैटिस्टिकल तरीके अपने किताब में तीन दिए हैं। तीन में से मीन जो है वो गणितीय एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज है, जबकि मीडियन एवं मोड वो आंकड़े की पोजीशन, स्थिति कहां है वो आंकड़ा, मीडियन वाला, मोड वाला, उस सीरीज में, तो उसकी पोजीशन या स्थिति को देख करके मीडियन फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज फाइंड आउट करने के दो विभाग बताए, एक मीन जो गणितीय मैथमेटिकल वे है एवरेज फाइंड आउट करने का, एंड ये जो है वो स्थिति या पोजीशन, आंकड़े की पोजीशन को समझते हुए किया जाता है। ठीक है, चलिए तो वही आपको यह लिस्ट बताया है। यहां मीन हम लोग चार प्रकार के पढ़ते हैं, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड वेटेड एरिथमेटिक मीन। ये चार प्रकार के मीन है। इन चारों में फॉर्मूला दी गई है, उस फॉर्मूला में आपको मिले हुए आंकड़े फिट करने हैं, फिट करके उसका मीन निकालना है। जबकि मीडियन एंड मोड में आप एक डेटा सीरीज दी हुई है जिसमें बीच में सेंट्रल पोजीशन की वैल्यू को मीडियन कहते हैं, और मोड मीन्स जो उस सीरीज में मैक्सिमम बार वह वस्तु की परचेस लोगों ने की हुई है तो वह मोड वैल्यू बन जाती है। जैसे नायक भाई ने टोपी पहनी, आपने देखी ब्राउन कलर की टोपी है, राइट? तब ये ब्राउन कलर की टोपी भाई साहब ने पहनी है, हाँ? मानो आबू के 90% लोग ब्राउन कलर की टोपी पसंद करते हैं, तो आप कहोगे कि इस आइटम उस सीरीज में इस आइटम की खरीदारी ज्यादा है, अर्थात रिवाज ज्यादा है, अर्थात फैशन ज्यादा है, या लोगों की पसंदगी ज्यादा है, तो वो मोड बन जाता है। तो मोड ये फ्रेंच शब्द है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा खरीदी जाती है, हाँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है। इसी तरह मानो बल्ब है, भाई 100 पावर के बल्ब है, 0 पावर के बल्ब है, 1000 पावर के बल्ब है, भाई मार्केट में कौन से बल्ब सबसे ज्यादा जाते हैं, उस आधार से वह जो ज्यादा जाता है, 100 का मानो ज्यादा जाता है तो वो मोड वैल्यू बन जाती है, राइट है? ऐसे जूतों की पैर है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, राइट है? मानो मैन्युफैक्चरर जो जूते बनाता है उसका रीडिंग ये आया, मार्केट रीडिंग वो आया कि भाई 7 नंबर के जूते अधिक बिके जाते हैं, तो वह पैर ऐसी जोड़ी कितनी बनाएगा? ऑफ कोर्स ज्यादा बनाएगा, है ना? तो इस तरह से वो 7 नंबर की जोड़ी के सामने जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी, भाई 500 जोड़ी गई, 1000 जोड़ी गई, 2000 जोड़ी गई, या 5 जोड़ी गई, जो गई जितनी पैर सेल हुई है, तो वो पूरे डेटा में 5 नंबर की साइज भाई कितने पीस गए? 100 पीस गए। 6 नंबर की साइज के जूते कितनी जोड़ी गई? भाई 200 गए। 7 नंबर की जोड़ी मानो 1000 पीस गए। 8 नंबर की जोड़ी मानो 50 पैर गए हैं। तो ये पूरी सीरीज में 1000 वाली जो पैर गई, ज्यादा गई, तो वो क्या बन जाता? उसका मोड बन जाता। तो आगे चलते हैं, बैकग्राउंड बता दिया, अभी समझते जाना कि मीनिंग एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन की। तो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, दैट सिंगल और टिपिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द मेजर फीचर्स ऑफ दैट डेटा सीरीज। वह आंकड़ा, एवरेज आंकड़ा, एवरेज जो निकाला, जो उस पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है। तो एवरेज वैल्यू क्या दिखाती है? इट लक्षणों को दिखाती है बाकी के सभी वैल्यूज का। इट शोज मीन वैल्यू एसेंसफुली इन समरी नंबर्स, इन ब्रीफ, इन कंडेंस्ड फॉर्म। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ माध्य, माध्य, माध्य हिंदी वर्ड है पर मैंने यहां इंग्लिश में आपकी फैमिलियरिटी के लिए लिखा है। माध्य कहा, मीन कहा, एवरेज कहा, सेंट्रल टेंडेंसी कहा, एकल मूल्य कहा, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन कहा, एक ही शब्द है, मुंझना नहीं, ठीक है? तो एवरेज या मीन वैल्यू इन दैट डेटा सीरीज, इट शोज सेंट्रल वैल्यू और मेजर्स ऑफ लोकेशन। All other values are around the central value or mean value. Purpose of ये क्यों करा जाता है? To represent a brief picture, to facilitate the comparison of data series, to represent the entire group of that data series, to provide basis of statistical analysis, एनालिसिस विश्लेषण करना, to guide in policy formulation. तो average आंकड़े क्या बताता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन बताता, पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए एवरेज आंकड़े गवर्नमेंट को भी सरकारी कार्यों में मददगार होते हैं। मानो बिजली विभाग है, वो देखना चाहता है कि इस शहर के लोगों का एवरेज बिजली का कंजम्पशन कितना है, तो वो क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा ना सभी का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेजेस, कौन सा एवरेज अच्छा माना जाता है, आदर्श माना जाता है, जो वैल्यू आप एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यदि वो क्लियरली एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड है बेस्ड ऑन उसमें सभी डेटा के सभी आंकड़े शामिल हुए हों, उसको कहते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इजी एंड इंटेलिजिबल, इजी टू डिटरमाइन, लिस्ट इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑन सैंपलिंग, जिसमें जिन सैंपल्स को सिलेक्ट किया गया है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस उतार चढ़ाव ना हो, इन इट एलजेब्रिक कैलकुलेशन इज पॉसिबल, एवरेज निकालने के लिए हम एलजीब्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक्स माइनस एम अपन करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को स्क्वायर किया, तो ये क्या है, कौन सी भाषा है गणित की, एलजीब्रा है, ठीक है। काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, तो जो अभी मैंने ओरली बताया वो बात आई, बेस्ड ऑन पोजिशनल एवरेजेस, तो वो दो है, मीडियन एंड मोड, एंड बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, कौन कौन से एवरेजेस है, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एंड वेटेड एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब यहां एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दिया है एरिथमेटिक मीन का, मानो 6 लोग हैं और उनकी इनकम 1625, 1625, 1630 है, तो उसको अगर आपने 6 से डिवाइड किया इनको टोटल को, तो आपकी एवरेज इनकम क्या आई उन 6 लोगों की, 1547 रुपीस, ये समझ में आया। सो टोटल किया 6 के इनकम को डिवाइडेड बाय नंबर जितने लोग हैं उनसे, ये हो गया एक लिमिटेड लोग है आपके पास, 6 ही है तो सीधा आपने ये कैलकुलेशन कर लिया, ओके। अब अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं तो फिर आपको दूसरे तरीके से उसका कैलकुलेशन करना होता है, जो इसमें फिर बाद में आपको बताते हैं मेथड। अब सेकंड है, यहां पर आप लोग थोड़ा सा किताब खोलेंगे, पेज नंबर 16, हिंदी में 16 है, 16 एंड 17 है, इंग्लिश में भी लगभग वही है, हाँ कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक 15 एंड 16 इंग्लिश में। इन्होंने वृक्ष की हाइट का एक उदाहरण दिया है, तो आप लोग एक बात सुन लें, एरिथमेटिक मीन जब लार्ज डेटा होते हैं, छोटा डेटा था तो आपको अभी बता दिया 1600, 1500, 1525 को टोटल करके कर लो, ज्यादा डेटा है तो चार मेथड्स है उसको कैलकुलेट करने की, अपनी किताब में 3 डाली गई है। अब 3 में से भी आप केवल फर्स्ट नंबर की जो पहली है ना मेथड, केवल उस पर ही ध्यान दो, बाकी 2 एज इट इज रहने दो, क्यों, इतनी हमें आवश्यकता नहीं है, किंतु बुक का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ बातें इसमें शामिल की जाती है ताकि ये बुक सही लगे, राइट है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो तैयारी करनी है एक ही मेथड की तैयारी करें, और वो मेथड मैं अभी आपको समझा देती हूं। तो इसमें ऊंचाई है, ये देखिए यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई है, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, ऐड 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 करते करते प्लस प्लस, और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 57 माइनस 26 करो, 92 माइनस 57 करो, 134 माइनस 92 करो, तो आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी, और वो यहां पर लिखी हुई है, नेक्स्ट टेबल जो बताया है उसमें दिया हुआ है आपको, राइट। पहली कॉलम में क्या है कि वृक्षों की हाइट 0 से 7 फीट, दूसरे प्रकार के वृक्ष है जिनकी हाइट 7 से 14 फीट, 21 से 28 इत्यादि लेकर के 49 to 56 फीट हाइट के वृक्ष है, राइट है। अब ये सेकंड कॉलम है ना एक्स, इसको बाद में देखते हैं, पहले थर्ड कॉलम पर आ जाओ। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 0 से 7 के फीट वाले कितने वृक्ष है, ये कहां से निकाला आपने, 57 माइनस 26, ठीक है। तो पहले आपने ये फ्रीक्वेंसी बना ली आपकी, ओके। अब ये जो 0 to 7 है इसका मिडल वैल्यू निकाला आपने, तो 3.5 हुआ ना, फिर 14 से 21 का 10.5, ये मिडल वैल्यू निकाल ली, ओके। अब यहां पर लास्ट कॉलम में आपको जो फाइंड आउट करना है f मल्टीप्लाइड बाय x, बीच में जो छोटा x है वो मल्टीप्लीकेशन की साइन है, ठीक है। तो 3.5 एंड 26, x एंड f, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का आपस में गुणाकार करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या जवाब आता है, 91.0 सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। अब उसका जो टोटल है वो 10.8, 29.0। गया ध्यान, टोटल कैसे आया, सबका ध्यान गया, सबको समझ में आया, मेरे साथ साथ स्पीड से चलो, सुनते जाओ, सब समझते जाओ साथ साथ, मेरे साथ साथ जो यात्रा करेगा उसकी बुद्धि में तुरंत सुन बैठता जाएगा। तो ये f मल्टीप्लाइड बाय x किया तो क्या मिल गया आपको, 91, 325 वगैरह वगैरह। अब इसका आपने कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेटर आप ले भी जा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो एग्जाम में, बाकी साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की मनाही है एग्जाम में। तो इसका टोटल आ गया, अब ये टोटल जो आ गया तो टोटल को स्टैटिस्टिक्स की भाषा में सिग्मा कहते हैं, ये जो उल्टा ई है ना वो ई नहीं है पर ये सिग्मा है, ई की साइज से भी थोड़ा बड़ी साइज का ये लेटर लिखा जाता है, ये सांकेतिक भाषा है, है? तो सिग्मा एफएक्स मिल गया आपको। अच्छा, अभी अपनी मीन निकालने की मेथड क्या बताई, एक्स बार यानी मीन m इज इक्वल टू e यानी सिग्मा fx अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स यहां 360 है एंड अपना टोटल जो आया 10,829 अपॉन 360 इज इक्वल टू 30.8 फीट या 30 फीट 1 इंच। ये क्या हो गई, वृक्षों की एवरेज, नहीं आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला वो क्या बोला, ये एक्सक्लूसिव की सीरीज है, ये इंक्लूसिव की नहीं, 3.7 मीन्स 6.99, पर ये जो क्लास इंटरवल है बहन, ये क्लास इंटरवल का मिडल पॉइंट तो 3.5 ही आएगा ना। आप जब गिनती करते हो वृक्ष तो वृक्षों में आप 6.99 तक ही हाइट के वृक्ष इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां 26 लिखे हैं ना, है कितने वृक्ष है 0 to 7 में, 26, तो मान के चलो ये 26 जो वृक्ष है वो 6.99 तक के हैं, और जिस वृक्ष की हाइट 7 होगी वो सेकंड में 31 में शामिल हुआ होगा। अभी कॉलम फर्स्ट एंड थर्ड की बात चल रही थी, बुक है, बुक तो है ना सबके पास है, बिना बुक के नहीं समझ में आएगा। नेपाली भाई तो अभी आए हो आप, कल भी नहीं अटेंड किया फिर कैसे समझ में आएगा, आप तो जस्ट पहुंचे हैं बहुत कुछ हो गया है कल तक, हा? कैसे आपको समझाएं बताओ, आप मेरे से अलग बैठना, अपन तो यही है ना, मधुबन में ही है, आप अलग से बैठना मैं समझाऊंगी आपको। आपको मीन निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है, उसके लिए यहां पूछा गया है, बताया गया है, से लेकर 49 एंड 56, राइट है, यहां से लेकर 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 19 है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी बताई है, वैरायटी डेटा है बीच में, राइट है, सीरीज में, ठीक है। तो इसका मिडल वैल्यू क्या होगा, 3.5। ये क्लियर हुआ, पहली एक लाइन समझ लो। हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स चाहिए, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ये है मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब ये तो ग्रुप है, इस ग्रुप से 26 को कैसे मैं गुना करूं, हो सकता है, इसलिए इसकी मिडल वैल्यू निकाली, इसकी इस क्लास की क्या निकाली, मिडल वैल्यू निकाली। फिर 7.4 पे 10.5 मिडल वैल्यू है, ठीक है। अब यहां आधा इसका आधा साढ़े तीन, इसका आधा साढ़े दस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि 26 गुना राइट, तो 91.0 आया, 91. अरे आपके पास रेडीमेड है, अभी विश्वास करो ना उस टेबल पर, चर्चाएं नहीं करो, ध्यान दो इसको कि इसको और इसको गुना किया तो जो जवाब आया वो लिखा हुआ है यहाँ। फिर इसको, सॉरी, इसको और इसको 31 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 तो 325.0 आ गया, राइट है। फिर इसका हमने टोटल किया तो वो टोटल आया, जो अपने को क्या मिल गया, सिग्मा, सिग्मा यानी टोटल ऑफ इसका, इसका टोटल, तो वो एफ एक्स। अरे ये तीनों अच्छी नहीं है, दूसरी दो ना संजय भाई, कल तो अच्छी दी थी, बंद है। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हैं। अच्छा ये तो इतने वृक्ष हैं वहां, मानो वो बगीचा है या वो जंगल है, जहां पर आप वृक्षों की हाइट मापना चाहते हैं तो अप टू 6.99 फीट, हाँ इतनी फीट के कितने वृक्ष है भाई, वृक्ष तो बहुत सारे हैं, कोई छोटी हाइट वाले, कोई मिडिल हाइट वाले, कोई ज्यादा हाइट वाले है, तो भाई इस हाइट वाले कितने वृक्ष है वहां, इट्स क्लियर ना, वहां उस उद्यान में, उस बगीचे में मानो 26 है, अरे ये तो क्लास है ना, वर्ग है ना, आप किताब में नहीं देखते ना, ये देखो ना, ये सारे अलग अलग वर्ग है ना। आपने क्या किया है, जो वृक्ष है ना उनकी मिनिमम हाइट कितनी है भैया, मिनिमम हाइट कितनी है वृक्षों की, कोई ऐसा वृक्ष है जिसको जीरो हाइट है, तो मिनिमम हाइट कितनी है वृक्ष की, आप जवाब दो, मुझे पूछ रहे हो तो आप जवाब दो, मेरे साथ बातचीत करो, मिनिमम हाइट कितनी है और मैक्सिमम कितनी, 56, मैक्सिमम 56 हुई ना, तो 56 तक के फीट वाले कितने वृक्ष है, तो 19 है ना, आपने इसमें फ्रीक्वेंसी दी है ना लास्ट में, 19 है, राइट है। उसके पहले 49 तक की फीट वाले 54 है, 42 के फीट वाले 71 है, राइट है ना, तो अलग अलग वेरिएशन होगा ना फीट हाइट, तो सब वृक्षों की अलग अलग होगी बस, तो उसी को हमने क्या कर दिया, ये जो टोटल मिला हमें, तो एक्स बार किसको कहते हैं, तो आप अपनी किताब में मीन लिखो, आप एक्स बार लिखो, एम लिखो, सब एक ही है। जब आप मीडियन पढ़ेंगे तो मीडियन को एम ही लिखा जाता है, और जब आप मोर पढ़ेंगे मोर की फॉर्मूला तो उसको जेड लिखा जाता है, ये सांकेतिक अक्षर है। इंस्टेड ऑफ एम ओ डी ई मोर लिखो, आपने जेड लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया। ये एक इस सब्जेक्ट की एक अपनी भाषा है, लैंग्वेज है, प्रतीक है, ठीक है। तो ये मिल गया ना एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब मैं ऐसे लिखूं फ्रीक्वेंसी का एवं एक्स वैल्यूज, हाँ एक्स वैल्यूज का टोटल, ये एक्स वैल्यूज मिली आपको है ना। तो ये एक्स वैल्यूज का टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो वो फाइंड आउट किया हमने एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स से, तो ये क्या मिल गया अपॉन एन नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 360। तो सिग्मा जो ये है ना इसके नीचे आपने 360 किया, फिर उसको डिवीजन करो, डिवीजन करके जो जवाब आया वो उन्होंने लिखा कि वृक्षों की एवरेज हाइट क्या है। दर्शना बहन एवरेज हाइट क्या है वृक्षों की, तो ये एवरेज वैल्यू मिली ना इस मेथड से, पता चला ना। तो जब आप कोई भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो आपको ठोस आंकड़े चाहिए। वो ठोस आंकड़ों को सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली फाइंड आउट करने की ये विधि थी, ये एक विधि बताई। ऐसी दूसरी है शॉर्टकट मेथड, उसके बाद है स्टेप डेविएशन की भी मेथड है, और एक है समेशन मेथड। तो मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपको ये एक समझने में भी वक्त लग रहा है, इसलिए पर्याप्त है कि आप एक ही सीखे, ज्यादा जाए ही नहीं सेकंड एंड थर्ड विधि में, कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा में पूछते हैं तो आप ये एक मेथड सीख लो, इसको समझ लिया है काफी है इतना, ठीक है बस। चलो अभी आते हैं गुणोत्तर माध्यम में, तो उसमें भी दो एग्जाम्पल है, पर मैं आपको वही सिंपल एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए कहूंगी एग्जाम में भी। तो आप इतना ही करें कि ज्योमेट्रिक मीन, जो आंकड़ों का मीन एरिथमेटिक मीन से नहीं निकल सकता, या निकालोगे तो आपको सही एवरेज वैल्यू नहीं मिलेगी, उन्हें आप ज्योमेट्रिक मीन से निकालते हैं। जिस प्रकार की प्रोग्रेस, जैसे कि पॉपुलेशन है, दो से कितने बढ़ जाते हैं चार, चार से कितने हो जाते हैं सोलह मल्टीप्लाइड बाय सोलह फिर 256 मल्टीप्लाइड बाय लाइक दिस, क्लियर हो गए बात, ओके। तो जब ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिन वस्तुओं की या व्यक्तियों की, पॉपुलेशन है तो व्यक्ति है, और इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो इंसेक्ट से जंतु से जंतु, जंतु से जंतु, जंतु बढ़ते 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 उनकी जो मल्टीप्लाई प्रोग्रेस होती है ना, बढ़ोतरी जो होती है, तो ऐसी कैलकुलेशन में जब आपको उसका मीन निकालना होता है तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन ये एक तरीका है एवरेज निकालने का। तो सपोज दिस फिगर्स आर गिवन एज, समझो आपके पास तीन ही आंकड़े हैं 325 एंड 45। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए अरुणा बहन 3, ओके। अब ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 45, और 3 है ना, तो अंडर रूट की निशानी बताइए, ये तरीका है ज्योमेट्रिक मीन का। तो अंडर रूट में क्या लिखा है 3 लिखा है, देखा आपने, फिर उसको अंडर रूट उसका निकाला, और इसके किताबों में ये एट द एंड ये अंडर रूट के लिस्ट बने हुए होते हैं, ये ऐसे टेबल्स बने हुए थे अंडर रूट के, स्क्वायर रूट के, लॉग टेबल के, एंटी लॉग के। तो इन जमेलों में आप न जाओ, आप इतना लिख कर आना ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। क्योंकि अगर इससे बड़ी संख्या है तो उसमें लॉग भी निकालना पड़ता है, एंटी लॉग भी निकालना पड़ता है, और अपना ये विषय मैथमेटिक्स का नहीं, अपना विषय है स्टैटिस्टिक्स, और वो स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक मीन इस तरह निकालते हैं, इतना काफी है आपके लिए। अब हार्मोनिक मीन थर्ड,
ये जो गुणोत्तर माध्यम
ये क्यूब है ना, क्योंकि थ्री है ना, ये तीन लोग है ना, इसलिए क्यूब रूट। वो मैथमेटिकल टेबल्स बने हुए होते हैं। बताया नहीं, हम नहीं बताएंगे, इट इज बहुत लंबा प्रोसेस है वो। ना नहीं, जरूरत नहीं है मेरे को आवश्यक। ये सिंपल लॉग कैसे देखना, एंटी लॉग आप किसी से भी सीख लेना, मैं पोर्शन का पूरा करूं। देखो बहन जी, मेरे को अभी दो ही पीरियड मिले हैं और अभी पूरा सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट करना है, सेकंड चैप्टर भी अभी शुरू नहीं हुआ है। पीरियड बढ़ाओ तो मैं सब सिखाऊं, पीरियड जितने दे रहे हो उसमें उतना ही कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन थर्ड प्रकार है एवरेज का, और वो एवरेज का थर्ड प्रकार हार्मोनिक मीन तब यूज होता है जब कोई भी व्हीकल की स्पीड को नापना हो। यहां से आप सिरोही जाते हो और सिरोही से यहां आते हो, जाते समय 60 किलोमीटर की स्पीड है, वापसी में 40 किलोमीटर की स्पीड है, तो आपका एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज को फाइंड आउट, मेन आप जो मूल मुद्दा है ना, वहां आपका किसी का भी अभी तक ध्यान नहीं है। आप बीच में खाली ये कैलकुलेशन में आपकी बुद्धि रुकी हुई है। इंस्टेड ऑफ दैट आपका पर्पस क्या है, दिल्ली जाना। आप बीच में आबू रोड क्यों आया, फालना क्यों आया, ये सब सोच रहे हो अभी। मैं कहती हूं डेस्टिनेशन को सोचो, आपका मूल उद्देश्य है एवरेज निकालना। क्यों निकालना, ताकि उससे आप कुछ एनालाइज कर सको, कुछ रीडिंग कर सको, राइट है। तो एवरेज निकालने के विभिन्न तरीके हैं, दो तरीके देख लिए, अब तीसरा है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की विधि फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब ट्रांसपोर्ट की स्पीड को नापना हो। वहां एरिथमेटिक मीन से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो गलत आंकड़ा हमें मिलेगा, राइट है। तो यहां पर बताया है कि स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 2, राइट। तो देयरफॉर इट्स एवरेज स्पीड वुड बी 2 अपॉन, ये ब्रैकेट है यहां, 1 अपॉन 60, जाते समय 60 किलोमीटर है, आते समय 40, तो 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 अपॉन 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 5 कर दे, का मतलब 28 किलोमीटर हमें जो उत्तर मिला इसका, कि भाई एवरेज स्पीड क्या हुई। हमारा लक्ष्य क्या था, एवरेज स्पीड जानने का, तो वो एवरेज स्पीड यहां पर 48 किलोमीटर। अगर यही डेटा हम एरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट करते तो हमें उत्तर मिलता 50 किलोमीटर, जो गलत था। इसलिए ऐसी जिन जिन प्रकार का बैकग्राउंड है उस प्रकार से उसका कैलकुलेशन होता है। इसी तरह वेटेड एरिथमेटिक मीन, जिसमें किस बात को वेट या इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो यहां पर आपके सामने विद्यार्थी बताए हैं ए बी एंड सी। अब इनमें से सर्वोत्तम विद्यार्थी कौन सा है, ये आपका फाइंड आउट करना है आपको। तो सब्जेक्ट है पी क्यू आर एस एग्जाम्पल, राइट है, और सब्जेक्ट वाइज वेट है 4, 3, 2 एवं 1। देख लिया आपने पांचवी कॉलम में, बानु भाई कहीं किताब में नहीं देख रहे हैं आप, है नहीं, नोटबुक नहीं, किताब में देखिए, मेरे से ले लो। हाँ, तो पी क्यू आर एस ये सब्जेक्ट है, तो एबीसी विद्यार्थियों ने विभिन्न मार्क्स लिए हैं उसमें, और सब्जेक्ट का जो वेट है वो 4, 3, 2, 1 है। उसके आधार से 28 मल्टीप्लाइड बाय 4, 35 मल्टीप्लाइड बाय 4, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 112 डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी में 13, 140, डब्ल्यू सी में 120 ये है ना। ये जो आंकड़े है ना वो एबीसी में जो आंकड़े है ना उसको इस वेट वाली ये जो है ना 4321 इससे मल्टीप्लाई किया है। अभी ये जो मिला आपको आंकड़े 302 270 305 इसको यहां आपने वेटेड एवरेज ऑफ स्टूडेंट वन वेटेड एवरेज ऑफ स्टूडेंट टू एंड वेटेड एवरेज ऑफ स्टूडेंट सी तो ये जो आपने संख्या लिखी नंबर ऑफ आइटम्स में 10 आएगा इज इक्वल टू 30 सो एंड सो तो अब कौन सा विद्यार्थी सर्वोत्तम हुआ सी ठीक है। ये जो आपको कैलकुलेशन मिला इससे आपको पता चला रियल रिजल्ट। अगर आप केवल वो कॉलम देखते ए बी सी वाली वो तो आपका एनालिसिस क्या हो जाता कि फर्स्ट सब्जेक्ट में 35 मार्क्स है ना इसलिए ये ज्यादा है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है हालांकि वो बात सच नहीं है। सो दीज आर द वेज स्टैटिस्टिकल वेज टू फाइंड द एवरेज ऑफ बराबर
जैसे ए बी सी तीन कैटेगरी
डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू सी ना ये कहू छे ना तमने शू कहू छे अहिया अच्छा इसमें पेज नंबर 19 इंग्लिश में देखिए वहां एक दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है ना वहां अंडर रूट में 7 आएगा 13440 वहां भी 7 आएगा इंग्लिश में 19 है और हिंदी में वेटेड एवरेज वेटेड वेटेड में ठहरो नहीं नहीं एक मिनट है आपको बताती हूँ। हाँ हिंदी में सही है हिंदी में कोई मिस्टेक नहीं है उसमें आप मेरे से अलग बैठना बहन अकेले को नहीं समझा सकते यहाँ अभी मीडियन पे आते हैं मीडियन ये कोई भी डेटा सीरीज है जैसे आप सामने देख रहे हैं सीरीज 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 25, 20, राइट है कितने हैं इसमें टोटल नंबर गिनती करो अच्छा 9 को इवन नंबर कहेंगे कि ऑड नंबर ऑड नंबर अच्छा अभी आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो नोटबुक में लिखो करो करो एक्सरसाइज है करो करेंगे नहीं तब तक आपको परीक्षा में नहीं आएगा करो छोटी सी एक्सरसाइज है फटाफट करो क्योंकि मैं ओरली समझाऊंगी उससे आप कुछ याद रखोगे कुछ नहीं और खुद करोगे तो बरोबर याद रहेगा। तो कोई भी डेटा सीरीज आप ले सकते हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं पर हम चलो एक बार असेंडिंग ऑर्डर को प्रीफर कर रहे हैं। अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो सभी भाई बहन लिखेंगे ज्योत्सना बहन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आया भानु भाई आया हाँ करो एक सेकंड करो इतना सरल है कि बुद्धि में ऐसा बैठ जाएगा कभी नहीं भूलोगे 50 साल तक भी नहीं भूलोगे ठीक है। आपको केवल ऊपर की वो लिंक काली लिखनी है हाँ फिर बाकी का काम मैं करवाती हूँ आपसे। मिनिमम क्या है 15 उसके बाद 20 23, 25, 25 तीन बार, 27, 23 भी दो बार और 40, राइट, मैक्सिमम 40 है ना, वो लास्ट में आया, आया असेंडिंग ऑर्डर कर लिया। अब 9 आंकड़े है ना, 9 नंबर है ना, तो 4 आपने यहां छोड़ दिए, 4 यहां छोड़ दिए, बीच में क्या आया, 25 आया है, राइट। तो 25 आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज इंटू टू इक्वल पार्ट्स, 4 उससे कम, 4 उससे ज्यादा। 25 से इस तरफ 4 बड़ी रकम होगी, 25 से इस तरफ 4 छोटी रकम वाले हो, ठीक है। तो पोजीशन, इस एवरेज को क्या कहते हैं, पोजिशनल एवरेज, राइट है, समझे। केदार भाई अपन सभी में, भानु भाई या केदार भाई दोनों में से कोई एक होगा, मानो मैक्सिमम हाइट इनकी है, हाँ, हम सभी यहां बैठे हैं, हमने सबको खड़ा कर दिया हाइट के अनुसार, पर बीच में हमने किसको खड़ा किया, जो सबसे मैक्सिमम हाइट वाला व्यक्ति है, राइट है, तो वो मीडियन वैल्यू होगी, वो एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है, ओके। तो उसको फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला समझाती हूं आपको। ये n प्लस 1 अपॉन 2, ये जो अब्लिक है ना वो अपॉन है, पर मैं टाइप नहीं कर सकती नीचे वो फॉर्मूला के फॉर्म से, इसलिए मैंने शॉर्टकट बताया है, इसमें अपॉन अब्लिक साइन करके भी लिखा सकते हैं। तो n प्लस 1 अपॉन 2, कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है दर्शना बहन, जब ऑड नंबर हो, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2। तो n क्या था आपकी मिडल वैल्यू, नाइन प्लस, या सॉरी आपकी ये जो है ना संख्या, जो टोटल संख्या है वो नौ है, नौ प्लस 1 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2, तो फिफ्थ आइटम, तो मीडियन वैल्यू इज फिफ्थ आइटम। एक है कि जस्ट ऑब्जर्व करते भी हमने पिकअप कर लिया 25, और अगर फॉर्मूला वाइज उसको कैलकुलेट करते तो भी 25 ही आएगा, तो कैसे आया वो बताया हुआ है। अब यहां पर पुनः एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, ये भी ऑड नंबर वाला है, देख लिया आपने, तो यहां n, n क्या है 5 है, टोटल कितनी है, दो लोग कितने हैं, 5 है, तो इसकी मिडल वैल्यू, मीडियन वैल्यू क्या हो गई, 18, राइट है, फॉर्मूला सेम टू सेम। अब इवन नंबर, मानो कि संख्या इवन नंबर की है, भाई स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 हैं, और उनके मार्क्स जो मिले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 11, 15, 18 है, 25 है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला थोड़ी अलग होती है इवन नंबर के लिए, कि साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बीच की 2 आ गई ना उसमें, मानो आपके पास 8 लोग थे तो बीच के 2 आएंगे ना, है पांचवा और छठा नंबर का, तो उन दोनों को मिला करके तो डिवाइडेड बाय है चौथा और पांचवा, 7, 8, हाँ चौथा और पांचवा, तो ऐसा करेंगे तो इज इक्वल टू 33 अपॉन 2 आया, ये समझ में आया, 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, बीच की आइटम, सेकेंड आइटम क्या है 15 है, थर्ड आइटम क्या है 18 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 33 अपॉन 2, तो मीडियन क्या आ गई 16.5। तो इवन नंबर में n अपॉन 2 ये फॉर्मूला लागू होती है, और ऑड नंबर में n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल आपकी जो मैंने दी है ना जेरोक्स नोट्स, उसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कृपया आप रिवाइज कर ले, अभी समझ लिया आपने। अब जो थर्ड वन है एवरेज वैल्यू का, मोड यानी बहुलक, उसको हिंदी में बहुलक कहते हैं, इंग्लिश में मोड कहते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स ए एम, ये तो एन है, मीडियन, हाँ मीडियन, ये एम जो है ना यहां मीडियन के लिए है, यहां मीडियन के लिए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हूँ पछी एने करेक्शन करी ले। अच्छा मोड अथवा बहुलक, ला मोड जो फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब रिवाज में कौन सी चीज ज्यादा बिकती है या पसंद की जाती है फैशन में क्या है, ठीक है। वे आप कहोगे ना अभी आजकल जीन्स बहुत बिकते हैं, है है ना एग्जाम्पल, तो वो उसको कहेंगे कि वो चीज ज्यादा फैशन में है। तो मार्केट में वो जब ज्यादा लोग परचेस करते हैं तो दुकानदार क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन ज्यादा बनाएगा, है ना। कॉटन के क्या बोलते पहनने वाले कपड़े कम बनाएंगे और जिस मटेरियल से चीजें ज्यादा बिकती है उसको ज्यादा बनाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोड। वैल्यू विच अपियर्स फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच हैज पोजिशन ऑफ ग्रेटेस्ट डेंसिटी विच हैज या हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यूज जिसके आसपास है उससे मोड वैल्यू कहते हैं। केनी एंड कीपिंग ने बताया है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। एग्जाम्पल इफ कॉलेज हॉस्टल बॉयज मंथली स्पेंड मनी अराउंड 2000 तो मॉडल एक्सपेंडिचर इज 2000 सो मेजोरिटी स्पेंड अबाउट रुपीज 2000 पर मंथ, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसमें बताया है उसका कैलकुलेशन, यहां बताया कैलकुलेशन ऑफ मॉडल लाइफ, तो लाइफ इन आवर्स एंड नंबर ऑफ बल्ब्स, थाउजेंड से 1100, 1100 से 1200, 1200 से 1300, 1300 से 1400, 1400 से 1500, 1500 से 1600 का ना पावर वाले बल्ब, राइट। तो इसमें से कौन से बल्ब ज्यादा बिकते हैं, सामने लिखे हुए हैं आंकड़े, 1200 से 1300 वाले कैटेगरी के बल्ब ज्यादा बिकते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। फिर उसको यहां फॉर्मूला के रूप में भी कैलकुलेट किया जाता है, जेड इज इक्वल टू मोड, जेड साइन है मोर की इज इक्वल टू एफ, फिर को यहां से दिखता नहीं है आई वन छे हाँ लोअर लिमिट एल वन है ना थोड़ा सा प्लस ये क्या है एफ वन एफ जीरो अपॉन एफ वन एफ जीरो, ये किताब में अपनी किताब में भी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फिर सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग फिगर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ये लिया गया है। तो 1200 क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 1200, 1300 क्या है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो 1200 फिर 100 माइनस 80 तो 100 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, माइनस 80 क्या है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 100 से ऊपर, राइट। फिर नीचे दिया है 100 माइनस 80 प्लस 100 माइनस 60, 60 क्या है नेक्स्ट वन, 100 के बाद के क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो। ये फाइंड आउट करने से हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है मॉडल लाइफ यानी एवरेज लाइफ 1233.33 आवर्स, ये हमें एवरेज इसके आंकड़े मिले हैं। मोड मोड अभी एक मिनट रुकिए, चैप्टर वन यहां पूरा हुआ। आपको इस चैप्टर से क्लास इंटरवल क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक मेजर 15 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसमें आपको मीन के चारों प्रकार, मीडियन, मोड, सबके एग्जाम्पल लिखने हैं। वो लोग वहां टेबल नहीं देंगे, आपको अपने आप याद रख के करना है। इसमें आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। नहीं, जीरो नहीं मिल सकता, वो लिख ही नहीं सकता, उसको आता है तो ही ये जवाब लिख सकेगा। जीरो का ये कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़े ही है, जो आप किसी की कहानियां या शायरियां लिखकर आए अंदर। नेवर यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट नो, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। जो जो मन में आया वो आपने फुल स्केप भर दिया, जीरो मार्क्स तब मिलता है, क्योंकि आपने रेलेवेंट पॉइंट ही नहीं लिखा है अंदर, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता है। जिसको आता है करे अटेम्प्ट, ठीक है। बाद में कभी भी आप मधुबन में आते हैं, मेरे से अलग से बैठेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पर्सनली भी, आपकी बुद्धि अनुसार कैसे फिट बिठाना है। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अभी बात चली है तो बता देती हूं। चैप्टर वन, चैप्टर टू, ये इस प्रकार के चैप्टर हैं। चैप्टर थ्री, फोर एंड फाइव डिस्क्रिप्टिव है, रिसर्च कैसे करना है, रिसर्च के टूल्स क्या है, क्वेश्चनर कैसे बनानी है, क्वेश्चनर के टाइप्स क्या है, क्वेश्चनर के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सैंपल कैसे सिलेक्ट करने हैं। मानो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को स्ट्रेस हो रहा है, ये आपको संशोधन करना है, स्ट्रेस के कारण क्या है, तो आप क्या करोगे। उस कंपनी में मानो 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो 500 के पास आप नहीं जाओगे, आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे, चूज करोगे। जिनको आपने सिलेक्ट किया, जिनको आप सवाल की प्रश्नावली दोगे, वो सैंपल कहे जाते हैं, और 500 लोग पॉपुलेशन कहा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उस कंपनी के 500 लोग, वो पॉपुलेशन मीन्स समग्र, राइट, कि टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ दैट कैटेगरी आर 500, उसमें से आपने मानो 150 लोगों को पूछा सवाल स्ट्रेस के बारे में, या 50 लोगों को आपने सवाल पूछा, तो 50 या 150 क्या बन गए भानु भाई, सैंपल बन गए, ठीक है ना। ओके, तो सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग के टाइप्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके पॉइंट्स रेडीमेड अपनी किताब में दिए भी हुए हैं, और आपको लेसन में समझाया भी जाएगा, वो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर है। उसमें भी आप शायरी या कहानियां नहीं डाल सकते, वही बात लिखनी होती है जो उसको पूछी गई है, ठीक है। तो तीनों चैप्टर में से भी आपको मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कर सकते हैं। चलो एग्जाम के लिए आपने ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चूज ना किया और आपने डिस्क्रिप्टिव किया, किंतु आप जो आपका प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें तो आपको कहीं ना कहीं एवरेज फाइंड आउट करना ही होगा, तो वहां आपको मीन का उपयोग करना ही होगा। जो आप प्रश्नावली बनाएंगे, यस नो आंसर आए या न्यूट्रल आंसर आया, उसका एवरेज नहीं निकालोगे, तो वहां तो आ गया निकालने को, और परीक्षा में लिखने को आया तो सोचते हो कैसे मीन निकालू, कैसे मोड निकालू, कैसे मीडियन निकालू, व्हाट इज मीन बाय दिस। तो अपना जो पूर्वाग्रह है आपके अंदर, बायस्ड व्यू है, उसको छोड़ दो आज। ये सिक्के की दो बाजू है, प्रेजेंटेशन में मीन निकालना, एवरेज निकालना, और अभी परीक्षा के लिए मीन निकालने में, अरे बाप रे बाप, डिफिकल्ट। सोचोगे तो डिफिकल्ट है, सरल सोचोगे तो सरल है। आपका नजरिया परसेप्टिव पॉजिटिव बनाइए, सब कुछ अच्छा ही है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। थोड़ा बुद्धि को यूज करना पड़ेगा, और बुद्धि यहां वहां जो बटी हुई है उसको यहां लगाना होगा, लगाओगे तो तुरंत आ जाएगा, कोई पाई पैसे की बात है ये, ठीक है। ओके, चैप्टर टू में हम अभी क्या सीख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सीखे, कौन है वो डेटा जो हमें मिले, उसने हमें क्या मैसेज दिया, क्या सीखा है? डिवाइड करना है, वेटेड एवरेज में। अच्छा, ये जो अभी आपने बोला वो आपने जवाब मुझे दिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें एवरेज की बातें आती है। मैंने अभी सवाल पूछा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डेटा थे, उन्होंने हमें क्या सिखाया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या फंक्शन करता है? और बताओ। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ने लार्ज डेटा को कंडेंस फॉर्म में, हाँ, बड़े ग्रुप के लोगों के आंकड़ों को, बहुत सारे आंकड़े थे, चाहे वो हाइट के हो, चाहे वो गणित के विषय के मार्क्स के हो, उनको आपने संक्षिप्त रूप में कैसे सिस्टमैटिकली डिफरेंट क्लासेस वर्गों में डिवाइड किया, है ना, संक्षिप्त रूप में, कंडेंस फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप में, राइट है। और उनकी क्या विविधता है ये भी पता चली हमें, राइट, कंडेंस फॉर्म एज वेल एज विविधता आंकड़ों की, कि भाई इस कैटेगरी में कितने लोग हैं, इस कैटेगरी में कितने लोग हैं। अच्छा, पहले तो 7 लोग थे, अभी फिगर बढ़ गया, 25 तक पहुंच गया, अभी 14 हो गया, अभी 8 हो गया, अभी 50 हो गया। तो आंकड़ों की विविधता यानी लोग कितने, हा? अलग अलग परसेंटेज, मैंने कहा ना आप लोगों के पीजी डिप्लोमा के, तो भाई 40 से 50 आपकी पासिंग क्या है, पास 50 है 40 है,
50,
तो 50 से 60 में कितने लोग थे पीजी के, 60 से 70 में कितने पास हुए, 70 से 80, तो वो आंकड़े जो मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी कही जाएगी ना, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है कि कैसे वैरायटी स्टूडेंट्स, कौन किस प्रकार के वैरायटी मार्क्स उन्होंने पीजी डिप्लोमा में लिए, तो उसकी विविधता मिली ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी शोज द डिफरेंसेस, जैसे हमारा नेमीचंद भाई तो समझता है इस बात को, मैं समझता स्टैटिस्टिक्स अभी इसको सरल लगेगा, क्योंकि ज्ञानामृत कौन लेता है, कितने लेता है, तो इसके पास कितने विविध आंकड़े हो गए इसके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज समराइजिंग द लार्ज डेटा इंटू ब्रीफ फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, राइट है, ओके। और ये कंडेंसमेंट के को डेंसिटी शब्द भी इस किताब में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे का चैप्टर में पुनः मेजरमेंट का दूसरा नया तरीका बताया है, क्यों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन मोड मीडियन का मेजरमेंट अच्छा था, उससे उसका अच्छा था, क्योंकि उसने हमें एवरेज निकालने की कितनी विधियां दिखाई, 4 मीन की, 2 मीन एंड मीडियन एंड मोड की, तो 6 बताई ना अपने को। अब चैप्टर 2 की क्यों आवश्यकता थी, जबकि आपको एवरेज निकालना बता दिया, डेटा को कंडेंस करना भी सिखा दिया, फिर ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये क्यों जरूरत हुई? आपको ये एवरेज वैल्यू का यहां मीन मोड मीडियन की एम लिखा है, ओके। तो यहां डेटा सीरीज में मानो यहां 21 है, यहां 25 है,
समझो ये 20 है, 25 है,
ये मानो 30 है, 35 है, ये 40 है, ठीक। तो चैप्टर 2 हमें क्या सिखाने जा रहा है कि आपको ये एवरेज वैल्यू तो पता चल गई, सेंट्रल वैल्यू तो पता चल गई, पर इस पॉइंट से ये 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 कितना दूर है या कितना स्प्रेड है, उनका फैलाव कितना है, कितना डेविएशन है। तो डेविएशन, स्प्रेड, फैलाव, वेरिएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, अन्य वैल्यूज का कितना है, ये भी तो मेजर करना चाहिए। शिव बाबा है सेंटर में, उनके समीप है दादियां, दादियों के समीप है अन्य दीदियां, अन्य दीदियों के समीप है फिर उनसे जूनियर दीदियां, उनके फिर समीप है ब्राह्मण कुल के भाई बहन, राइट है, ओके। तो ब्राह्मण कुल के भाई बहन शिव बाबा से जो सेंट्रल वैल्यू है उससे कितने दूर है, जूनियर दीदियां कितनी दूर है, सीनियर दीदियां कितनी दूर हैं, दादियां कितनी दूर हैं, अरे क्लियर। बाबा तो उसके साथ है, शिव बाबा के साथ मिले हुए हैं, दोनों कंबाइंड है दोनों कंबाइंड है ये तो है। तो बात क्या है कि एवरेज वैल्यू जो हमें पता चली फर्स्ट चैप्टर में, उनसे बाकी की वैल्यूज कितनी दूर है, समीप है, फैली हुई है, या उसमें कोई विचलन है, वेरिएशन है, डेविएशन है, उसको भी तो देखना चाहिए। क्या केवल सेंट्रल वैल्यू मिल गई तो पूरा उस डेटा सीरीज के फीचर्स पता चल गए, फीचर्स नहीं पता चलते पूरे डेटा सीरीज के, केवल एवरेज वैल्यू पता चलती है। तो वो कहते हैं एवरेज वैल्यू नो डाउट रिप्रेजेंट द ऑल वैल्यूज, बट फिर भी कई जगह ये मीन मोड मीडियन एक होंगे, पर यदि उन्हें ग्राफिकल वे में ए बी एंड सी तीन डेटा सीरीज को अगर आप फिगर में ड्रॉ करने जाएंगे तो उनका शेप अलग अलग होगा, ग्राफ बताएगा कि मीन मोड मीडियन आपको सेंट्रल में दिख रहे हैं एवरेज वैल्यू, किंतु तीनों का फैलाव, स्प्रेड, डेविएशन, विचलन, वेरिएंस अलग अलग है, तो वो भी मेजर करना चाहिए, उस बिहेवियर को भी स्टडी करना चाहिए संशोधन में। इसलिए उसको कहा अपकिरण की माप या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मानो जेड यानी मोड यहां आया है, हार्मोनिक मीन यहां आया है, ये एरिथमेटिक मीन है, ठीक है, फिर ये कौन सा था, ज्योमेट्रिक मीन यहां आया है मानो। तो इस मुद्दे से, इस पॉइंट से, यहां से तो ये डेविएट है ना, इससे ये भी डेविएट है ना, अलग है ना। अब इसी बात को आपको एक ग्राफ के रूप में अभी बताया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा। और आपकी किताब खोलिए तो किताब में चैप्टर 2 का पहला पन्ना आपको ये ग्राफ दिखाता है, देख लीजिए, देखा, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वही ग्राफ है कि कैसा सेंट्रल वैल्यू से बाकी के अलग अलग हैं, दूर हैं। अच्छा, तो आपकी किताब में ये जो ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, इसमें आप बीच की जो लकीर है वो क्या बता रही है, मीन ऑफ ए डेटा सीरीज, बी डेटा सीरीज एंड सी डेटा सीरीज, राइट। ठीक है, ये इसका मानो पिक पॉइंट है, राइट। ये एक ग्राफ है, इसको इन्होंने ए ग्राफ कहा है, ये इसको इन्होंने बी ग्राफ कहा है, और इसको इन्होंने सी ग्राफ कहा है। अब मीन ए बी एवन सी, हाँ, तीन डेटा सीरीज है, तो तीनों का मीन तो एक है, किंतु उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो शेप बदल गया है, राइट। तो इस शेप में ज्यादा आंकड़े यहां पर जमे हुए हैं, है ना। फिर इससे ये जो बी आकार का ग्राफ है वो फैला हुआ ज्यादा है, तो इसके इसकी फ्रीक्वेंसी फैली हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहां सेंट्रल में लोकेट हुई है, राइट है, इसकी स्प्रेड है, और ये सी की तो और भी ज्यादा है, फ्लैट फ्लैट कर्व, राइट है, चपटा कर्व, राइट है, और ये पिक है। अब यही ग्राफ दोबारा आप कुर्टोसिस में भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में सेम ग्राफ होगा, तो इसको जब टॉप में यहां पर आंकड़ों की जमावट ज्यादा है तो इसको शिखर पॉइंट कहते हैं, पिक पॉइंट कहते हैं। फिर ये थोड़ा सा फैला हुआ तो प्रसरण यहां ज्यादा है आंकड़ों का, इसमें कम है, क्योंकि ये यू जा रहा है, शंकु आकार में जा रहा है, और ये चपटा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें बी में घटाव सॉरी बढ़ोतरी एवं फिर घटाव समान है दोनों तरफ, इसलिए इसका फैलाव ऐसा है, जबकि इसमें फर्क क्या है कि ज्यादा प्रसरण है, ज्यादा स्प्रेड है, ज्यादा डेविएशन है, ठीक है। तो जिस तरह की डेटा सीरीज होती है उस तरह का उसका शेप बनता है ग्राफ का। तो कुछ डेटा सीरीज इस प्रकार की इसलिए ऐसा है, कुछ डेटा सीरीज इस प्रकार की इसलिए ऐसा है, कोई आप निश्चित तो नहीं कह सकते कि तीनों सीरीज में एक समान आंकड़े होंगे, राइट है ना। तो इसका एक उदाहरण, यही सेम चीज का उदाहरण मैं पेज नंबर बताती हूं आपको, ये ग्राफ है ना, उसकी डेटा सीरीज एक अलग से बताई है इस किताब में, हिंदी में 41 पेज नंबर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 और 2। इंग्लिश में 46 है, हिंदी में 41 है, हिंदी इंग्लिश में 40 है, 40 इंग्लिश में 40 है, ठीक है। हाँ हाँ, ज्यादा फैले हुए ना, फैलाव ज्यादा है, स्प्रेड ज्यादा है। अब आप इसको समझिए इस बात से, जो पेज नंबर 40 और 41, 40 इंग्लिश में, हिंदी में 41। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, क्लास दोनों तरफ एक समान है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ये समझ में आया, वर्ग एक समान है, हा? पर सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की अलग अलग है ना, अलग तो जो ये जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है उसके कारण ग्राफ का शेप अलग आ जाता है। तो केवल अगर आप एवरेज निकाल करके अगर आप कोई कंक्लूजन डिराइव करते हैं तो वो आपका कंक्लूजन इनवैलिड होगा, इसलिए बताया कि साथ में डिस्पर्शन को भी मेजर करो, डिस्पर्शन यानी अपकिरण, यानी कितना उसका सेंट्रल से कितना उसका फैलाव है, स्प्रेड है, डेविएशन है, शिव बाबा से कौन आत्मा कितनी दूर है, ये भी तो मेजर करना चाहिए कि केवल इससे सफिशिएंट हो गए कि हाँ ऑन एन एवरेज 9 लाख बाबा के बच्चे हैं, हा? तो फिर 9 लाख में से भाई इतने बच्चे ऑन एन एवरेज पके ब्राह्मण है, ये आपने निकाल लिया। पर ये जरूरी है कि भाई वो परमात्मा से कितने नजदीक है, कितने दूर है, ये भी तो स्टडी करनी चाहिए कि वो पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी है, ढीले ढाले है, कभी कभार कुछ धारणाओं में चलने वाले है, कैसे है? है तो ये बात को यहां पर लिया गया है। ठीक है, अच्छा एक और बात आपका अज्ञान दूर करने के लिए बोल रही हूं। आपने इस चैप्टर की शुरुआत में जो ग्राफ देखा, और अभी एक और ग्राफ दिखा रही हूं, पेज नंबर 46 वाला, हिंदी में सेम है पर अंतर एक ही है उसमें। वहां ABC केवल लिखा हुआ है, जबकि ये 46 पेज नंबर पर उसको नाम भी दिए गए हैं, लेप्टोकुल्टिक, मेसोकुल्टिक, प्लेटिकुल्टिक, राइट है? जैसे अरावली के पहाड़, सापुतारा के पहाड़, विंध्याचल के पहाड़, नाम होते हैं ना, है? अलग अलग नाम होते हैं ना, तो मुझे क्या सापुतारा क्यों लिखा है, है? विंध्याचल क्यों लिखा है, सह्याद्री के पहाड़ क्यों लिखा है, कहोगे क्या? नहीं होगा ना मन में। ऐसे इन्होंने इस ग्राफ को 3 नाम दिए हैं, हा? तो ये कुर्टोसिस जब अपन सीखेंगे तो ग्राफ सेम है, पर यहां उन ग्राफों को विशेष नाम दिया है, वो बाद में इसको पढ़ेंगे, तो मुझना नहीं। ठीक है, ओके, चलो ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब किरण की माप हमें ये बताती है कि सेंट्रल वैल्यू से बाकी की वैल्यूज कितनी दूर है, कितनी समीप है, कितनी स्प्रेड में है, कितनी डेविएशन में है, सब एक ही बात है। तो वो जो मेजर किया जाता है, उसका डेविएशन जो मेजर किया जाता है, उसका स्प्रेड या उसका फैलाव जो मेजर किया जाता है, उसको अपकिरण की माप या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं, जो हमें मीन मोड मीडियन के एवरेज वैल्यू से पता नहीं चलता था। तो डिफरेंस समझ में आया क्यों चैप्टर 2 है? ठीक है, अब ये मेजर करने के जो तरीके हैं वो यहां पर 4-5 दिखाए हैं हम लोगों को। वो कौन कौन से हैं? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद कोरिलेशन भी है एंड रिग्रेशन भी है। ठीक है, अब जो रेंज है वो क्या है अभी आगे पढ़ेंगे। तो रेंज क्या करता है? रेंज को हिंदी में परास या विस्तार भी कहा है, कोटिबंध भी कहा है, जो पर्याय शब्द है वो हिंदी किताब में दिए है रेंज को, पर हम ज्यादा फैमिलियर है वर्ड रेंज से। ओके, आप दुकान में जाते हैं तो पूछते हैं आपके पास बच्चों के ड्रेसेस की कौन सी रेंज है, पूछते हो ना, तो कहेगा 5 साल से लेकर के 10 साल की उम्र के बच्चों के मेरे पास रेडीमेड गारमेंट्स है, कहेगा ना, है? तो उसमें स्मॉलेस्ट रेंज क्या हुई ज्योत्सना मैन? 5। एंड हाईएस्ट रेंज क्या हुई? 10। तो हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट रेंज माइनस करो तो क्या बचा? 10 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा? 5, वो रेंज है, वो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में एब्सोल्यूट रेंज इस तरह निकाली जाती है, रिलेटिव रेंज में क्या करते हैं, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, तो यहां है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी गुणांक, उसका गुणांक, तो L माना लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, L माना नॉट द लोएस्ट बट लार्जेस्ट। तो 15 - 1 = 14, अपने किताब में जो एग्जाम्पल है वो 15 - 1 वाला है। पर इससे क्या होता है, केवल एक लोएस्ट एंड हाईएस्ट का डिफरेंस ही पता चलता है, बीच की वैल्यू का कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए सेकंड टाइप ऑफ मेजरमेंट इन्होंने हमें सिखाई है क्वार्टाइल डेविएशन की। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है भाइयों? क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ, राइट? ओके, जब अवेलेबल डेटा को चार इक्वल भागों में बांटा जाता है तो फर्स्ट पार्ट को Q1 क्वार्टाइल 1, Q2 जो ऑलवेज मीडियन होता है, जो लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, Q3 एंड रेस्ट इज Q4, ठीक है। अगर वह 10 भागों में करता है तो परसेंटाइल्स है, डिसेंटाइल्स है, पर उतने तक हम लोगों को यहां स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमें क्वार्टाइल डेविएशन, तो मीडियन से ये पार्ट कितना दूर है, ये वैल्यू कितनी दूर है, ये वैल्यू कितनी दूर है, राइट है? इससे सेंट्रल वैल्यू से, मीडियन से कितनी दूर है, ये डेविएशन, इसको कहते डेविएशन। तो वो पढ़ना यानी समझना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अभी जो क्वार्टाइल डेविएशन है उनसे अच्छा है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन से अच्छा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स में, संशोधन में, डेजर्टेशन में, जैसा हमारा संशोधन होगा, जिस प्रकार का रिसर्च होगा, कहीं आपको मीन डेविएशन हेल्पफुल होगा, कहीं आपको एरिथमेटिक मीन यूजफुल होगा, तो कहीं आपको ये क्वार्टाइल डेविएशन उपयोगी हो सकता है, तो कहीं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपकी संशोधन की क्या है सब्जेक्ट, उस पर आधार करता है। पर एक अवेयरनेस के लिए आपको ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर आपको ये अवेयरनेस दे देता है कि इस रीति से ये टूल्स है, क्या ये टूल्स है आपके संशोधन में हेल्पफुल होने के लिए। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन बताया है QD, QD मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 कौन सा था? वो Q1 ये है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, CQD कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसका इन्होंने अपनी किताब में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सिस्टमैटिकली, वो आप लोगों को आगे इंटरेस्ट हो तो करना। मीन डेविएशन में इट इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल, एरिथमेटिक मीन ऑफ जितना डेविएशन हुआ है आंकड़ों में, न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रॉम द मेजर्स ऑफ मीन और मीडियन। चाहे मीन डेविएशन है या मीडियन डेविएशन है, तो वो एरिथमेटिक मीन उन आंकड़ों का डेविएशन कितना हुआ है उसका माप है, और उसमें मॉड्यूलस आपको आपकी किताब में दिखा रहे हैं, हिंदी में पेज नंबर 38, ये जो मैथमेटिकल पार्ट है ये केवल आपकी अवेयरनेस के लिए है, इस पर कोई आपको बड़ा क्वेश्चन मीन डेविएशन पर आएगा नहीं, ये केवल अवेयरनेस के लिए, और इसको कोई आपको ज्यादा महत्व नहीं देना। हाँ जी बताते हैं। हाँ इंग्लिश में 36 पेज। अब मेन सेंट्रल बात देखनी है आपको कि हमें उन्होंने रेंज सिखाया, फिर बताया क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज से क्वार्टाइल डेविएशन से रिजल्ट अच्छा निकलता है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन की भी लिमिटेशंस है तो मीन डेविएशन निकाला जाता है। तो मीन डेविएशन में ये जो मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस साइन कहते हैं, जिसके आधार से प्लस या माइनस की जो निशानी आती है आंकड़ों में उसको इग्नोर किया जाता है और रिजल्ट लिया जाता है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो इससे उतने तक हमें फायदा होता है। परंतु इससे भी जो बेटर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या देता है कि उसमें ये मॉड्यूलस की संज्ञा या निशानी यूज नहीं होती है, पर वो प्योरली स्क्वायर रूट को लेता है। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन या एस सिग्मा 6 नंबर का, राइट, तो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का, पर हम क्या इससे मैसेज लें स्टैंडर्ड डेविएशन कि इसमें जो प्लस माइनस की साइन, इसमें जो इग्नोर करके कार्य हुआ था वो यहां पर अपने आप छूट जाता है, और इसका जो स्क्वायर रूट का रिजल्ट जो है वो बड़ा एक्यूरेट होता है। अब इसका नाम डेविएशन को मापने का स्टैंडर्ड ये फॉर्म है, क्या नाम मिला इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। आप जब बैग्स खरीदने जाते हैं मार्केट में तो सबसे अच्छी बैग किसको मानते हैं, सूटकेस, कौन सा नाम है स्टैंडर्ड नाम, वीआईपी, कौन सा फेमस है, तो कहते हैं वीआईपी की बैग है ना वो स्टैंडर्ड की बैग है, ऐसा कहते हो ना। वैसे डेविएशन को नापने के लिए रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन से भी ये जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसलिए ये कार्ल पियर्सन ने दिया था, उसने इन्वेंट किया था, और इसकी जो मैथमेटिकल वे है वो फॉर्मूला यहां दी गई है, एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी उसमें दिया है, परंतु एट प्रेजेंट वो करना संभव नहीं है सारा कैलकुलेशन करना, पर किताब में सब कुछ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी से क्यों बेहतर है, ये जवाब तैयार करना, बहुत बहुत तो क्वार्टाइल डेविएशन तक तैयार करना, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में जाना नहीं, ठीक है। फिर भी आपको इच्छा हो तो आपकी खुशी की बात है, आपको अगर वो लोग कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो अटेम्प्ट करना। अभी ये कुर्टोसिस पे लास्ट ईयर ना, ये स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस इस पर थोड़ा सा पूछते हैं, लास्ट ईयर भी थोड़ा सा पूछा था। ये जो चार फॉर्म थे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैथमेटिकल वे था रिजल्ट डेविएशन को परखने का, डेविएशन को नापने का। अब जो हम सीखेंगे वो है ग्राफिकल वे, ठीक है। तो इस ग्राफिकल वे में अपनी किताब में भी दिया है और इसमें भी आगे देखते हैं। अभी हम
हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज वैल्यू फाइंड आउट किया, पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में और उसमें भी अभी हम स्क्यूनेस जब डेटा की सीरीज में विषमता है उसको स्क्यूनेस कहते हैं। यहां पर विषमता नहीं है, यहां का इक्वल साइज में पहले राइजिंग है फिर इक्वल साइज में घट रहा है, डेटा में इतना वेरिएशन नहीं है। अभी अभी आपने ये पेज नंबर 41 में एंड आई थिंक उधर 40 राइट इंग्लिश में, ये जो आपने टेबल देखा था ना, ये टेबल देखा था ना, अभी देखा था ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा साइलेंटली देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। किस तरह घटती बढ़ती है, ठीक है, एंड कितनी विविधता है उसमें, राइट। तो ये जो स्क्यूनेस है ना, वो हमें डायरेक्शन, दिशा, किस दिशा में आंकड़ों का घटाव बढ़ाव है उसका अंदाज, उसका मेजरमेंट हमें सिखाता है। तो ये तो सिमेट्रिकल है, परंतु अब आपको दूसरे दो डायग्राम इसी के साथ दिखाते हैं। तो यहां पर मीन, मीडियन, मोड तीनों समान है। अब एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें तो लंबी पूंछ कहां पर है, डायरेक्शन, तो ये डेविएशन अर्थात डेटा में डेविएशन है सेंट्रल वैल्यू से। ये सेंट्रल वैल्यू है ना भाई साहब, है ना, यहां है ना, तो इससे ये कितना डेविएट है, तो लेफ्ट हैंड साइड है ये ज्यादा, राइट है। तो ऐसा शेप क्यों आया, इस शेप को विषमता कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं, पर ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। अगर ये राइट हैंड साइड है तो ठीक है, अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां मीडियन है, यहां मीन है और यहां मोड है, यहां मीडियन है, तो मीडियन के राइट हैंड साइड पर मीन है जब पॉजिटिव स्क्यूनेस है एंड मोड लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें जब लेफ्ट नेगेटिव स्क्यूनेस है तो मीन मीडियन के लेफ्ट हैंड साइड है, मोड राइट हैंड साइड है, एंड जब उसमें समता है, उनके आंकड़ों में समता है, दोनों तरफ समान साइड डायरेक्शन है, तो तीनों एक जगह पर, तो इसमें स्क्यूनेस नहीं है, और इनमें स्क्यूनेस है, इसमें भी स्क्यूनेस है। ये जो शेप डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है, तो दिशा यहां लेफ्ट हैंड साइड, यहां पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट हैंड साइड, ये इसका एसेंस है। अब इसके बाद ये तो हमें डायरेक्शन तो मिला,
परंतु फिर भी एक और मेजरमेंट बताते हैं जिसको कुर्टोसिस या विकृति कहती है। तो डेटा में कितनी विकृति है ये मापना है, मेजर करना है, तो उसको कुर्टोसिस कहते हैं, जो अगेन वही डायग्राम है जो पहले पेज वाला है, राइट। तो अभी हम चलते हैं उस पर, पेज नंबर 46 है हिंदी में एंड इंग्लिश में 44 है। तो कुर्टोसिस हमें क्या बताता है, ए डायग्राम में नेगेटिव कुर्टोसिस है तो कहां पहुंचा है इसका, टॉप पे, इसको पृथु शीर्ष भी कहते हैं, पीक भी कहते हैं, शिखर भी कहते हैं। फिर बी डायग्राम नॉर्मल कर्व है एंड सी डायग्राम पॉजिटिव कुर्टोसिस है, जिनका नाम दिया ए का लेप्टोकुर्टिक, मेसोकुर्टिक एंड प्लेटिकुर्टिक। तो कितनी आंकड़ों में विषमता है ये इस शेप से पता चल रहा है। स्क्यूनेस के डायग्राम में क्या था और इसमें इस डायग्राम में क्या अंतर है, वो पूंछ वाला डायग्राम था, लेफ्ट साइड ज्यादा झुकाव या राइट साइड ज्यादा झुकाव, लंबी पूंछ है उसमें, राइट। जबकि इसमें क्या है, या तो शंकु आकार का एक डायग्राम है या तो बहुत ही फ्लैट डायग्राम है, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों शेप में अंतर पता चला। तो ये दोनों शेप हमें आंकड़ों की विषमता एंड विकृति का मेजरमेंट या नाप या माप या मापन बताते हैं। इसलिए केवल मीन मोड मीडियन से ही हम रियल पिक्चर नहीं जान पाते, अतः वो भी एक तरीके हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैथमेटिकल वे था, और ग्राफिकल वे में कौन से दो थे, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ठीक है, ओके। तो शब्दों की भ्रमणा में नहीं जाना कि कुर्टोसिस शब्द क्या है, डोंट थिंक अबाउट इट, जो है हम उसको हिंदी में तो समझ ले, विकृत, हाँ विकृति शब्द तो अपन जानते ही हैं, विषमता शब्द को भी जानते हैं, तो स्क्यूनेस इज विषमता एंड कुर्टोसिस इज विकृति, ठीक है, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कोरिलेशन पर, सहसंबंध। इसमें बताया यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर डिफरेंट, एग्जाम्पल हाइट एंड एज, ऊंचाई एवं उम्र। ओम शांति। कोरिलेशन, ये दूसरा ग्राफिकल मेजरमेंट डेविएशन को मेजर करने का, सेंट्रल वैल्यू से अन्य वैल्यूज कितनी दूर है, स्प्रेड है, फैलाव है, या दो वेरिएबल के आपस में सह संबंध कोरिलेशन क्या है, इसको जानने का ये तरीका है। दो वेरिएबल्स वैरायटी टाइप के होते हैं, जिस विषय पर आप संशोधन कर रहे हैं तो आपको वैरायटी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वैरायटी व्यक्ति होंगे, उनका प्रभाव एक दूसरे पर क्या है, उनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर क्या है, इस रिलेशन को, उनके इन्फ्लुएंस के रिलेशन को, उनके प्रभाव के रिलेशन को स्टडी करना, इसको कहते हैं कोरिलेशन। तो वस्तु की मांग डिमांड, वस्तु का दर प्राइस, तो यहां डिमांड एंड प्राइस दोनों वेरिएबल है, चर, हिंदी में चर कहते हैं इसको, परिवर्ती यानी जो परिवर्तन होता, पर इनके परिवर्तन का आधार वह स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर, स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर क्या है? अगर ये हम स्टडी करते हैं तो भी हमें अपने रिसर्च का रिजल्ट प्राप्त होता, ठीक है, कि भाई इस वर्ष में आम की डिमांड कितनी थी और पिछले वर्ष की भेंट में आम की डिमांड कम थी या ज्यादा थी, उसमें किस फैक्टर ने, किस कारण ने आम की डिमांड पर प्रभाव डाला? तो कई फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर जो मेन है वो है प्राइस। तो आप कई बार कहते हो, दुकानदार कहते हैं इस बार ना आम बहुत महंगे हैं, इस साल आम महंगे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, एक्सपोर्ट बहुत हुआ इसलिए महंगे हैं, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है इसलिए भी महंगे हैं। तो ये हमें प्रभाव एक दूसरे का, एक दूसरे पर जो है, ये अगर हम जान सकते हैं तो उससे क्या होता है कि स्टडी का, संशोधन का, हमें रिजल्ट का एक्यूरेट पता चलता है। तो कोरिलेशन हमें क्या बताता है? यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर डिफरेंट, एग्जांपल हाइट एंड एज। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल अफेक्ट्स द कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज इन वैल्यू ऑफ अनदर। जो एज बढ़ती है तो हाइट भी बढ़ती है। तो चेंज इन एज कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंजिंग द हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। ऐसे ही पेरेंट्स की हाइट का आधार से चिल्ड्रन की हाइट निर्भर करती है। तो पेरेंट्स की हाइट क्या बन गया यहां पर? स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड बच्चों की हाइट क्या बन गई? डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर। तो ये शब्द जब आपकी किताब में आप पढ़ेंगे, आश्रित का मतलब क्या है? यहां आश्रित का मतलब वो आश्रित नहीं, यहां एक दूसरे पर वो निर्भर है, उनका घटाव या बढ़ाव आपस में निर्भर है एक दूसरे पर, वो पढ़ना है। तो क्या बताया? चेंज इन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल आइदर इन द सेम डायरेक्शन, अगर उनके आपस में कोरिलेशन सेम डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर एक में घटाव है तो दूसरे में बढ़ोतरी है, और एक में बढ़ोतरी है तो दूसरे में घटाव है, तो उसको क्या कहेंगे आप? अरुणा क्लास के बाद मुझे मिलना है। हाँ तो हम समझ रहे थे। अरे भी क्या हो गया? मैं प्रोजेक्टर बंद करने को नहीं कहा, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अच्छा तो अपने पास भी लाइट जाती है मधुबन में? अच्छा 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 मैंने कहा फोन आया तो रिकॉर्डिंग नहीं करना, इसलिए रिकॉर्डिंग का बंद करवाया मैंने तो लाइट भी गई है नहीं मालूम। So units of two variables are different, example height and age. तो उनका आपस में relation कि height कैसे age पर निर्भर करती है या age का height पर क्या असर है, इसको correlation कहते हैं। चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल अफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज इन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल आइदर इन द सेम डायरेक्शन. समझो, ये भी इसमें घटाव है तो इसमें भी घटाव है, इसमें बढ़ोतरी है तो इसमें भी बढ़ोतरी है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर इसमें घटाव है, इसमें बढ़ोतरी है और इसमें बढ़ोतरी है और इसमें घटाव है, तो इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, अपोजिट रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो इन द सेम डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव और इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज नेगेटिव, देन टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड. एग्जाम्पल, रेनफॉल, बारिश से यील्ड ऑफ द क्रॉप, धान की उपज क्या होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप, आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, बट प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड. इफ चेंज इज इन द सेम डायरेक्शन इन सेम प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड. क्या शब्द आया इसमें, पॉजिटिव के आगे कौन सा शब्द मिला आपको अभी, परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड. इफ चेंज इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड. ठीक है, ये संबंध बताया इन्होंने. अतः इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इफ टू और मोर क्वांटिटीज वेरी इन सिंपेथाइजिंग सो दैट मूवमेंट्स इन द वन टेंड टू बी अकंपनीड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स इन द अदर्स देन दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड. एल आर कॉर्नर ने ये डिफाइन किया कोरिलेशन की डेफिनेशन. इसी तरह क्रॉक्सटन एंड काउडन उन्होंने बताया, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ अ क्वांटिटेटिव नेचर द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग मेजरिंग रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फॉर्मेशन इज नोन एज कोरिलेशन. ठीक है, अब यहां टाइप्स बताए हैं कोरिलेशन के, लीनियर एंड नॉन लीनियर. इफ फॉर अ यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल इफ देर इज अ कॉन्स्टेंट चेंज इन द अदर वेरिएबल ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज देन मैथमेटिकली इट कैन बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाइड बाय सॉरी प्लस 2. तो यहां x एंड y दो वेरिएबल बताए हैं. अब x का यूनिट क्या है, कितना है, 1. y कितना है, 7. x मानो 1 से 2 हो गया तो y की वैल्यू भी बढ़ गई है, x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू भी बढ़ गई है, उसकी वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू बढ़ गई है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 27. तो ये क्या हो गया, जैसे जैसे ज्यों ज्यों उसमें भी बढ़ोतरी है वैसे इसमें भी बढ़ोतरी है. ये रिलेशन पॉजिटिव तो है ही, परंतु इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर. ठीक है, एंड नॉन लीनियर में क्या है, अप्स एंड डाउन्स होंगे. ये जैसे बढ़ रहा है तो वो घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो उसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं. और ऐसे नॉन लीनियर रिलेशनशिप का कर्व जो है वो ऐसा सर्कल जैसा होगा, और वो जो रिलेशन है वो रिलेशन जो दूसरे ग्राफ में देख रहे हो वो सीधी कतार है ना. देखिए, दिस रिलेशन व्हेन ट्रेस्ड इन द ग्राफ इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप. जो एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप अगर आप ग्राफ पे डालेंगे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. लीनियर शेप को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से. ठीक है, नॉन लीनियर को. सच कोरिलेशन इज फाउंड इन फिजिकल एज वेल एज एब्सोल्यूट साइंसेस. ऐसा परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कहां मिल सकता है, सिवाय साइंस के, एब्सोल्यूट साइंस के कहीं नहीं मिल सकता. बाकी जगह कर एक्सेप्शनल रिलेशनशिप होगा, परफेक्ट इतना नहीं होगा. नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप when a unit change in one variable does not bring चेंज इन अनदर वेरिएबल एट अ कॉन्स्टेंट रेट बट ब्रिंग्स अ चेंज एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट. एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस वी गेट नॉन लिनियर कर्व. इट मीन्स देर इज नो स्ट्रेट लाइन. तो सोशल साइंसेस में ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित है, राइट right? जबकि एब्सोल्यूट साइंस क्या है, वो कोई पदार्थ पे आधार है ना, और यहां ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर है. तो सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स में भाई उतार चढ़ाव होता है, कोई बोल नहीं सकते इस दीपावली पर कितने फटाके लिए जाएंगे. आप क्या कहोगे कि लोगों के उमंग उत्साह पर आधार है ना. अब मानो कोई घटना घट गई है, कोई कारण बन गया है, तो इस बार मानो आबू की मार्केट में उतने पटाखे नहीं खरीदे गए जितने की लास्ट ईयर खरीदे गए थे, तो आप क्या कहोगे, कोई परफेक्ट एस्टिमेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना. हा? तो इसलिए जहां ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर पर आपका आधार है तो वहां पर हम लीनियर कर्व नहीं प्राप्त कर सकते, नॉन लीनियर कर्व आपको या सह संबंध दोनों के बीच का ऐसा मिलेगा. अब सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, एक लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप्स बताया, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कोरिलेशन का. और कोरिलेशन का टॉपिक जरूर आप अटेम्प्ट करें चैप्टर 2 से, बहुत सरल है, सहज है, डिस्क्रिप्टिव है. ओके तो सिंपल कोरिलेशन में दो फैक्टर्स के बीच का रिलेशन मेजर किया जाता है, स्टडी किया जाता है. मल्टीपल में तीन से अधिक एंड पार्शियल में एक फैक्टर का कांस्टेंट रखते हुए दो के बीच का क्या प्रभाव है इन्फ्लुएंस से एक दूसरे पर, वो स्टडी किया जाता है. मानो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों की हाइट का आधार माता पिता दोनों पर है, ठीक है. तो मानो आपने मां की हाइट को कांस्टेंट स्टडी करते समय उसको कांस्टेंट रखा, एज इट इज रखा, और आप पढ़ना चाहते, स्टडी करना चाहते, जानना चाहते हैं कि बच्चे की हाइट कहां तक पिताजी के हाइट पर आधार रखा है. इसका मतलब आपने किसकी हाइट को देखा, या केवल पिताजी की हाइट एवं केवल बालक की हाइट, पर सच क्या है, मां की हाइट का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, पर उसको अभी आपने राइट फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट माना. अब तीसरा दूसरा एग्जांपल, ये मैंने ह्यूमन बीइंग का बताया, अब दूसरा एग्जांपल, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन प्राइस सप्लाई, ठीक है. तो अभी आपको मानो एट प्रेजेंट संशोधन करना है कि डिमांड कहां तक घटी या बढ़ी प्राइस के कारण, सप्लाई को अभी आपने मर्ज रखा, कांस्टेंट रखा, उसका प्रभाव कांस्टेंट रखा, और फिर आप देखना चाहते हैं कि कहां तक तो बात चल रही थी अपनी पार्शियल कोरिलेशन की, राइट. सिंपल कोरिलेशन में दो फैक्टर्स का वन अपॉन अनदर इफेक्ट स्टडी करते हैं, मल्टीपल में तीन से अधिक फैक्टर्स का प्रभाव. मानो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर का कारण अगर आप देखना चाहते हैं तो किन किन कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, राइट. तो आप क्या कहोगे, सो मैनी फैक्टर्स, क्योंकि तामसी खुराक है, राइट. नंबर 2 क्रोध है, नंबर 3 उसका वो क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नंबर 4 उसको डायबिटीज है, राइट. टेंशन है, तो सो मैनी फैक्टर्स. तो बीपी डिपेंड्स अपॉन दिस 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 फैक्टर्स. तो आप जब स्टडी करना चाहते कोरिलेशन ऑफ यानी इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स अपॉन द बीपी, क्लियर, तो उसमें तीन से अधिक फैक्टर्स है तो वहां कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन कहा गया, जबकि पार्शियल कोरिलेशन में तीन फैक्टर्स है उसमें से एक फैक्टर का प्रभाव कांस्टेंट रखते हुए मानते हुए और सप्लाई के प्रभाव को कांस्टेंट रखते हुए प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर क्या है जब ये स्टडी किया जाता है तो उस कोरिलेशन को पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बताया है द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेस, बोथ द वेरिएबल्स मे बी म्यूचुअली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर सो दैट नाइदर कैन बी डेजिग्नेटेड एज द कॉज एंड द अदर एज द इफेक्ट। कोई कोई एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं कोरिलेशन के जिसमें बोथ आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ठीक है। Both the correlation variables may be influenced by one or more other variables or external factors. The correlation may be due to pure chance in that case. Now methods of studying simple linear correlation. Teen methods hai. Isme pehli method hai scatter diagram, dot diagram. Hindi mein isko prakirna. प्रकीर्ण डायग्राम कहा है, तो इस पर इन्होंने लास्ट ईयर आई थिंक वो बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क का है ना आप लोगों का, वो पूछा था इन्होंने, उसमें ये आपको छह डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देना होता है, इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है पेज नंबर 50 है इंग्लिश में। और आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने ये सब टाइपिंग कराते समय हर डायग्राम के बाजू में कुछ शब्द लिखवाए थे विशेष, ताकि डायग्राम के साथ इसका एक्सप्लेनेशन उस कीवर्ड्स के साथ आप तुरंत एक्सप्लेन कर सको। फिफ्टी वन हिंदी में, 51 इंग्लिश में बताया ना, पहले ही बताया, 50 51 हिंदी में, 51 एंड 52 राइट है। अब ये जो पहला डायग्राम है उसका नाम है पॉजिटिव कोरिलेशन, फर्स्ट डायग्राम, अब इसको समझेंगे कैसे। राइट ये है डायग्राम, इसके इर्द गिर्द एक्स 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 वाई 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 ऐसे, इसलिए जो तीन लकीरें दी है ना, तो जो आपके डेटा है मानो डेटा सीरीज में जो भी आंकड़े हैं वो आपके यहां पॉइंट आउट किए गए हैं जिससे कि ये बनता है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जीरो राइट है। तो ये जो पॉजिटिव रिलेशन है वो सप्लाई एंड प्राइस का होता है। मानो आप वाई एक्सिस पर प्राइस लेते हैं और वस्तु की सप्लाई आप एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है। अटेंशन है सबका, एक सेकंड में समझ में आ जाएंगे, बहुत सरल टॉपिक है ये। जो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी इंक्रीजिंग। ना एक भैया तुम बिजनेसमैन हो, प्रोडक्शन करते हो, तो तुम हायर प्राइस पे ज्यादा बेचना चाहोगे या कम प्राइस पे ज्यादा बेचना चाहोगे?
नहीं, वैसे अगर सप्लाई स्टॉक ज्यादा बढ़ जाए तो प्राइस डाउन नहीं।
हायर प्राइस पे, हायर जो जो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर की टेंडेंसी क्या रहेगी? लॉ क्या है? लॉ ये है कि जो जो प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर उसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ाना चाहता है।
यहाँ आपने तो पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहे हैं, एक्स इज इंक्रीजिंग, वाई इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इज इट पॉजिटिव।
यहाँ बात है वाई एक्सिस पर प्राइस है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो उस वस्तु की सप्लाई भी बढ़ेगी। पर उसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है कभी कभी, नॉर्मली आता है। नॉर्मली ये लॉ है कि जो प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लायर को इंटरेस्ट होगा ज्यादा सप्लाई करने में। ये एक लॉ है, ये फंडामेंटल लॉ है। इनका जो सवाल है, एक मिनट, इनका जो सवाल है कि अगर मेरे पास ज्यादा सप्लाई, स्टॉक बहुत बढ़ गया है तो मैं लोअर प्राइस पे वो चीज देना चाहता हूं। एक मिनट, वो सभी वस्तुओं के लिए लॉ नहीं है। वो एक एक्सेप्शनल केस हुआ कि आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक नहीं है संसार में, अथाह प्रोडक्ट्स हैं संसार में, चीजें कितनी है, उन सभी चीजों को लेकर के आप एक जनरल लॉ जो बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई। बाकी एक 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 कोई फैक्ट्री के पास, एक कोई दुकानदार के पास कोई चीज का स्टॉक रहा हुआ है, वो एक अलग केस हो गया, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। उसके कारण आप एक जनरल रूल नहीं कह सकते। जनरल रूल ये है कि हायर द प्राइस सप्लाई विल बी हायर, तो दोनों, ये भी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। और अगर नॉर्मल अगर प्राइस घटते हैं तो सप्लायर भी क्या करेगा, कम दाम पर कम सप्लाई मार्केट में भेजेगा। ठीक है, ये जनरल रूल है। तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर जो है तो इस डायग्राम का उन्होंने क्या नाम दिया, पॉजिटिव कोरिलेशन दिया। अब इसको इन्होंने नेगेटिव कोरिलेशन दिया, राइट है। तो यहां डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम दिस इज कॉल्ड लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड राइट साइड। डायग्राम को समझने की लैंग्वेज बोल रही हूं आपको। लेफ्ट साइड टू राइट साइड, राइजिंग अपवर्ड, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड फॉलिंग डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है डायग्राम, राइट है। तो यहां प्राइस एंड नॉट डिक्लाइन, डिमांड ज्यादा भाव है मार्केट में तो आप क्या करोगे, कम डिमांड करोगे उस चीज की, है कि अभी बहुत महंगी चीज है। और हाफूस आम शुरू में अप्रैल मास में जब निकलते हैं तो 1000 रुपया एक डजन का, फिर 700 रुपया एक डजन का, फिर 500 रुपया एक डजन का, है ना। तो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन क्या है, मानो ये प्राइस है लेवल का, ओके, तो इस पर डिमांड ये है, ठीक है। अगर प्राइस यहां गया, मानो यहां से यहां आया, तो डिमांड भी इनवर्सली प्रोपोर्शन बराबर है ना। तो प्राइस हायर है तो सॉरी डिमांड ऐसे बढ़ेगी, राइट, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन जो है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइजेस, जबकि यहां इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन सप्लाई, फॉल इन प्राइस। क्लियर हो गई? तो कोरिलेशन दो फैक्टर्स का समझ में आया है ना। तो ये जो अपना चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये स्टडी करता है, ठीक है। ओके फिर यहां पर उन्होंने बताया है कि इट इज इन द सेम प्रोपोर्शन पॉजिटिव रिलेशन इसको अनुपात कहा है हिंदी में पॉजिटिव कोरिलेशन इन द सेम प्रोपोर्शन तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इस डायग्राम का नाम दिया उन्होंने और इसको परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन का नाम दिया है यहां भी सेम प्रोपोर्शन ये शब्द आपको एक्सप्लेनेशन में डालना है और ये जो है वो नॉन लीनियर ये सभी लीनियर डायग्राम थे स्ट्रेट लाइन के ये नॉन लीनियर कर्व है क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं वो हैपेजार्ड है इसलिए वो यू भी नहीं आ रहे हैं यू भी नहीं आ रहे हैं पर यू हो रहे सर्कल में इसके आंकड़े जा रहे हैं और ये जो डायग्राम है वहां एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन नो कोरिलेशन इसलिए जीरो कोरिलेशन क्योंकि सभी समांतर जा रहे हैं है ना
वन और टू और थ्री और फोर में
प्रोपोर्शन
यू सिमिलर है
हाँ
उसमें एग्जैक्ट 45 डिग्री प्लस उसमें 45 डिग्री माइनस
हाँ
बाकी में एट रैंडम एंगल आएगा वन
और ये नॉन लीनियर है और ये नो रिलेशन कोरिलेशन ऐसे भी कुछ होते हैं जिनका आपस में मानो नैरोलैक पेंट है एंड वेजिटेबल्स इनका आपस में कोई कोरिलेशन हो सकता है इनका अगर आप सहसंबंध नापने जाओ मेजर करने जाओ तो होगा कोई नैरोलैक पेंट एंड वेजिटेबल्स का होगा कोई कोरिलेशन नहीं होगा बस लाइक दिस तो देर आर सम फैक्टर्स विच हैव नो कोरिलेशन तो अपना जो स्टडी है अपना जो सब्जेक्ट है वो हमें क्या मैसेज दे रहा है ये मैसेज दे रहा है कि हमें वेरिएबल्स का एक दूसरे पर क्या इन्फ्लुएंस है प्रभाव है वो संबंध को भी जानना चाहिए ठीक है फिर इन्होंने यहां पर कॉज क्या है इफेक्ट क्या है इतने डिटेल में नहीं जाता है कोरिलेशन का टॉपिक ना नहीं वो यहां बात लागू नहीं होगी
उसे जब परफेक्ट कहते हैं तो ये पार्शियल
नहीं पार्शियल में तीन का आपस में कोरिलेशन पढ़ा जाता है स्टडी किया जाता है तीन का उसमें एक को कांस्टेंट रखते हुए दो का वन अपॉन अनदर क्या इफेक्ट है ये पढ़ा जाता है मानो आप तीन भाई बहन बैठे हैं यहां ये तीनों ये टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन का इस पढ़ाई का आप दोनों पर क्या प्रभाव है हम बहन को कांस्टेंट रख रहे हैं इसके ऊपर इस पढ़ाई का क्या इन्फ्लुएंस है उसको अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं और आप दोनों पर इस टॉपिक का क्या प्रभाव है या ये टॉपिक कहां तक आप पढ़े तो ये पार्शियल हो गया जबकि नॉन लीनियर का मतलब क्या है अगेन मैं रिपीट करती हूं समझा रही हूं आपको नॉन लीनियर का मतलब है कि जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव में क्या है पॉजिटिव में दोनों फैक्टर्स में मूवमेंट एक डायरेक्शन में है सकारात्मक है पॉजिटिव में सकारात्मक है नेगेटिव कोरिलेशन में दोनों फैक्टर्स के बीच में इनवर्स रिलेशन है राइट है जबकि नॉन लीनियर में क्या है कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है कभी घटता है कभी बढ़ता है कभी बढ़ता है कभी घटता है कभी कॉन्स्टेंट भी रहता तो उसका शेप आपो आप फिर ऐसा नॉन लीनियर हो जाता है सीधी लाइन नहीं है सीधी रेखा में नहीं है जब आंकड़े घटते बढ़ते सीधी रेखा में नहीं है प्रोपोर्शन में तो फिर वो इस तरह से समझा जाता है ठीक है क्लियर हो गई बात ये जरूर आप प्रश्न तैयार करें परीक्षा के लिए और जरूर ये लोग कहीं ना कहीं आपको छोटा चाहे बड़ा जरूर ये पूछेंगे। अब ये एक तरीका था कोरिलेशन को स्टडी करने का। तो जिसने भी ये ग्राफिकल वे सिखाया तो फिर भी बोला कि ये भी सफिशिएंट नहीं है मेजर करने के लिए, तो भाई मैथमेटिकल वे होना चाहिए। तो मैथमेटिकल वे क्या है? कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। फिर वही कार्ल पियर्सन का स्टैंडर्ड डेविएशन था, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन अगेन फॉर्मूला आती है, उसमें आप न जाए, छोड़ दो। अब स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, तो स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है वो क्या स्टडी करता है, उसके उसके ओरिजिनल क्या बोलते हैं एसेंस को पकड़ो। वो कहते हैं कि डेटा को जब आप स्टडी करते हैं तो आप इसको कोरिलेशन कहते हैं कि एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पर क्या इफेक्ट है। किंतु आपको अगर किसी की ऑनेस्टी को नापना है, किसी के इंटेलिजेंस को नापना है, अर्थात क्वालिटी को देखना है। आप देखो पूरे अभी तक के टॉपिक्स में सारा क्वांटिटी 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 मेजरमेंट क्वांटिटी मेजरमेंट था, क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहीं भी नहीं था। तो केवल ये स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन को इन्वेंट किया था। और रैंक कोरिलेशन में क्या करते, ग्रेड देते हैं, ऑर्डरिंग, राइट। तो वो ग्रेड क्या है वो बस इतना जान लो। ये 56 पेज नंबर 56 अब इसमें इन्होंने क्या बताया है कि मानो ये 8 कंट्रीज है और उसमें दो प्रकार के वेरिएबल दिए हैं। कौन से वेरिएबल दो प्रकार के हैं? कि वहां मृत्यु दर क्या है और लोगों की पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में कितनी है। तो मैक्सिको, चाइना, श्रीलंका, कोरिया, यूएसए, इटली, यूके एंड स्वीडन, राइट। तो इन देशों की मृत्यु दर क्या है वो दिया हुआ है, दिया है। फिर नीचे पीसीआई, पीसीआई मीन्स पर कैपिटा इनकम बताई है। अब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम आपके इसमें किसकी है? 21790 स्वीडन की, 23660, राइट। तो आपको यहां पर इन्होंने ये जो इनके फिगर्स है ना, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। देख लिया आपने रेट, रेट क्या लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 49, 42, 35 जो ऊपर है ना मॉर्टालिटी रेट, वो इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है। और इनकम को कैसे लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, देखा आपने। अनइक्वल है, अनइक्वल है। अच्छा अब एक मिनट, आर वन एंड आर टू जो है ना ये रैंक दिए गए हैं, तो इसका मॉर्टेलिटी रेट कितना है 49 एंड इसकी इनकम कितनी है मैक्सिको की 2490, फिर चाइना की मॉर्टेलिटी रेट 42 एंड 370, फिर 35 है श्रीलंका की और 470। इसको रेट एंड इनकम, मॉर्टेलिटी रेट एंड इनकम को पहले इन्होंने एज इट इज जैसा टेबल में दिया वैसा लिख लिया है। उसके बाद ये जो आर वन है वो रैंक बताई गई है एंड आर टू जो है तो रैंक ऑफ रेट, आर वन है रैंक ऑफ रेट यानी मृत्यु दर का रैंक है आर वन एंड आर टू क्या है इनकम का रेट है। तो 2490 ये जो रैंक मिली है इसको 49। तो मृत्यु दर में सबसे ज्यादा मृत्यु दर किस देश का था इसमें, उसको नंबर वन मिला है जो मैक्सिको का। इसलिए आर वन के नीचे, आर वन की कॉलम देखो, उसमें नंबर वन लिखा है मैक्सिको के लिए, राइट है। एंड मैक्सिमम ये जो एक मिनट पहले एक रैंक को देखो, आर वन को देख लिया आपने पहले, हाँ, तो इसका सबसे ज्यादा मृत्यु दर है ना, इसलिए फर्स्ट नंबर किसको दिया, मैक्सिको को दिया। और सात मृत्यु दर किसका है, स्वीडन का। तो स्वीडन को कौन सी रैंक मिली, कम से कम है ना वहां मृत्यु दर, तो उसको आठवीं रैंक मिली है। आर वन के नीचे देखो ना लास्ट में आठ, ये स्वीडन के लिए। क्लियर हुई, पहले यहां तक समझो, एक 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 स्टेप बाय स्टेप समझो, टेबल को समझा। मृत्यु दर 42 किसका है, चाइना का, तो उसको क्या रैंक मिली है, दो। फिर श्रीलंका का मृत्यु दर 35 है, उसको रैंक मिली है थ्री। ओवर, यहां तक क्लियर है। आर टू क्या है, रेट ऑफ पीसीआई इनकम, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पीसीआई किस के देश की है, स्वीडन की, तो उसको कौन सी रैंक मिली, एक। तो कहां लिखा है वो, नीचे। क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा इनकम है, और उसकी मैक्सिको की सबसे ज्यादा मृत्यु दर थी, इसलिए उसको मैक्सिको की लाइन में, उसको मृत्यु दर में वो नंबर वन है। एंड स्वीडन किस में नंबर वन है, इनकम में नंबर वन है, ठीक है। तो आर वन एंड आर टू मिला ना, हाँ। अब डी क्या है, बाजू के कॉलम में आ जाइए, डी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। तो आर वन माइनस आर टू किया तो ये फिगर आ गए, और उसका स्क्वायर किया, 5 × 5 इज इक्वल टू 25, 6 × 6 इज इक्वल टू 36, तो डी स्क्वायर किया, फिर उस फॉर्मूला को यहां फिलअप किया है, और इस आधार से वे रैंक कोरिलेशन यानी दो के बीच का करते। इस टॉपिक को आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, केवल समझाने के लिए समझा दिया, ओके। बट आप ये स्कैटर डायग्राम जरूर करें, कार्ल पियर्सन का भी ना करें, स्पीयरमैन का भी छोड़ना है तो छोड़ देना, ठीक है, ओके। अब आते हैं, इसके बाद का टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। आप बहुत हल्के हो जाओ, इस टॉपिक में भी थोड़ा सा ही केवल अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाकी का ये जो टॉपिक है गहराई में मैथमेटिकल, वो हमें नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ तैयारी नहीं करनी, इसलिए आप हल्के हो जाओ इस बात में। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, इसके अर्थ को जरूर आपको समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी। कोरिलेशन ने दो या दो से अधिक फैक्टर्स या वेरिएबल का संबंध बताया। रिग्रेशन यह भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, पर रिग्रेशन एनालिसिस हमें यह बताता है कि यदि आप आज एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हो सेल को बढ़ाने, तो एडवर्टाइजमेंट पर आपने मानो 40,000 खर्चे, तो आप एस्टीमेट कर सकते हो कि 40,000 का इन्वेस्टमेंट मुझे कितना सेल बढ़ाएगा। तो दिस प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन एस्टिमेशन कि क्या प्रोबेबल है, क्या संभव है, इसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई होता है कि जैसे आप टॉस करते हो क्रिकेटर, तो भाई मुझे बैटिंग आएगी या बॉलिंग आएगी, प्रोबेबल है ना, संभव है कि मुझे बैटिंग आ जाए, संभव है कि मुझे बॉलिंग आ जाए। ऐसे इस प्रकार का एनालिसिस अगर स्टडी करना है कि एडवर्टाइजमेंट पर 40,000 खर्च किए तो क्या मुझे 1,00,000 का सेल मिलेगा या 1,00,000 से कम का सेल मिलेगा या 1,00,000 से ऊपर का सेल मिलेगा, ये जो एस्टिमेशन निकालना है तो उसके लिए एक्स की इफेक्ट वाई पर एंड वाई की इफेक्ट एक्स पर। एडवर्टाइजमेंट इज एक्स, सेल प्रॉफिट इज वाई, तो y की x पर इफेक्ट एंड x की y पर इफेक्ट, इसे कहते हैं रिग्रेशन की इक्वेशन लाइंस, रिग्रेशन की टू इक्वेशन लाइंस। और आपकी किताब में ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, बस यहां तक आपको स्टडी करना है एक जानकारी के लिए। इसमें भी मल्टीपल, सिंपल एंड पार्शियल का मीनिंग, रिग्रेशन का मीनिंग सेम है जो कोरिलेशन में है। तो ये x अपॉन y एंड y अपॉन x की टू रिग्रेशन इक्वेशन लाइंस है। फिर उसे कैसे प्रूव करते हैं, कैसे उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला में अप्लाई किया है, वो पीछे दिया हुआ है, उसको आप कोई ज्यादा उस पर बुद्धि नहीं चलाए। तो ये जो पेजिस है, ये जो पेजिस है, इसको आप छोड़ दे, ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है और इस मैथमेटिकल पार्ट को हमें आगे नहीं करना है। तो ये रिग्रेशन में बताया है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट आर रिलेटेड कॉजली इज रिग्रेशन एनालिसिस। इसके भी टाइप सिंपल, मल्टीपल, लीनियर, नॉन लीनियर, जिसमें सिंपल रिग्रेशन में दो फैक्टर्स के बीच का रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीपल में 3 से ज्यादा, लीनियर में सीधी रेखा, नॉन लीनियर में सर्कल टाइप। अब यहां पर एक और स्लाइड अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे, इससे भी आपको बहुत स्पष्ट होगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का डिफरेंस क्या है। ये सारा डिस्क्रिप्टिव है, जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हमें नहीं करना है, पर ऐसा ये सीख सकते हैं हम। C इज इक्वल टू कोरिलेशन, राइट है, सो C इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विच वेरी इन सिंपथी टू वन अनदर। जबकि रिग्रेशन क्या है, इट इज रिटर्निंग बैक टू द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। Coefficient correlation is a measure of the direction and degree of the linear relationship without caring for which one is dependent independent variable. Jabki regression studies the functional relationship, predict or estimate the value of the dependent variable for any given value of independent variable. Yani advertisement per cost, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया कि जितना हमने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया उससे मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई। इन प्रैक्टिस सोशल साइंसेज बिहेवियर्स ऑफ ईच वेरिएबल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, एग्जाम्पल यील्ड ऑफ क्रॉप यानी धान की उपज depends on factors such as rainfall, fertility, temperature, fertilizers, etc. Multiple linear regression equation. और उसके बाद last में path analysis बताया। ये regression के related topic नहीं है, ये separate एक short note type topic है, in case आपको तैयार करना हो तो कर सकते हैं। उन्होंने एक बायोलॉजिकल एग्जाम्पल देकर के ये पाथ एनालिसिस जो एक नया इन्वेंशन निकला है, उन्होंने बताया कि ये जो मकाई का भुट्टा होता है ना, थोड़ा सा उस पौधे को याद करो एक मिनट के लिए। तो मकाई का भुट्टा जिस पार्ट पर ग्रो होता है, वो जो डंडा होता है ना, जो थूर से जुड़ा हुआ होता है, तने से जुड़ा हुआ होता है, तो तने के साथ जो पार्ट जुड़ा हुआ होता है और उसमें फिर ये भुट्टे का पार्ट होता है, ऐसे ही फूलों की वैरायटी में भी, तो जिस पोर्शन में फूल उगता है वो किसी और छोटी स्टेम, उसको कहते हैं स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो स्टेम फिर तने के साथ जुड़ी हुई होती है। तो उन्होंने ये स्टडी किया कि अगर हमें अच्छी क्वालिटी का भुट्टा चाहिए या अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स चाहिए तो हमें स्टडी करनी चाहिए कि उसका तना की क्वालिटी क्या है, उसकी स्टेम STEM उसकी क्वालिटी क्या है और उसके जो वो गोल होता है ना जिसमें कि फूल उगता है या भुट्टा उगता है, वो कड़क कड़क जो भाग होता है ना, देखो भुट्टे के दाने आप खा लेते हो पर नीचे जिस जो डंडी लटकती है तो वो कड़क भाग जो होता है ना, तो कहते उसकी भी साइज क्या है, अगर इस साइज का आधार उसकी स्टेम पर है, स्टेम का आधार उसके तने पर है, तो ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। कुछ समझ में आई, फिर से बताती हूँ आपको, आपस में इनकी क्वालिटी क्या है, अगर बेहतर क्वालिटी हम बनाएंगे तो फूल की क्वालिटी भी बेहतर होगी, भुट्टे की साइज भी अच्छी क्वालिटी का होगा, नहीं तो कोई कोई छोटे छोटे इतने इतने भुट्टे भी निकलते हैं, वो पूरा छिलका निकालो तो उसके वो रेशमी बाल निकलते हैं और अंदर दाने कितने हैं, कोई कोई जगह दाने उगे हुए हैं, ऐसा क्यों होता है, और कोई भुट्टा है जो एकदम भरा हुआ होता है, भाई ऐसा क्यों होता है, तो वे भी आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जहां ये ग्रो होते हैं उसके जो पार्ट है ना, वो पार्ट तो वो पार्ट पर डिपेंडेंट है, भुट्टे का उगना या फ्लावर का उगना। ये इन्वेंशन जो निकाली गई है इसको पाथ एनालिसिस कहा है, जिसमें बताया है इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट का जो उछेर अपन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो इन प्लांट ब्रीडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल, उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तना, वो स्टेम टुगेदर एंड ऑल्सो सेपरेटली ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। इसके हेल्प से हम ये क्या इसकी इफेक्ट है आपस में इन फैक्टर्स की उसके ग्रोथ पर, ये हम स्टडी कर सकते हैं और उसमें ये रिग्रेशन एनालिसिस मददगार एक वे है, एक मेथड है, एक टूल है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपका ध्यान करेक्शन की ओर इस चैप्टर के ले जाना चाहूंगी, एक जगह पर भले वो पार्ट हम इतना स्टडी नहीं करेंगे पर फिर भी करेक्शन करा लेती हूँ। सेकेंड यूनिट की ही बात चल रही है, हिंदी में पेज नंबर 39 खोलेंगे आप, अच्छा इंग्लिश में पेज नंबर 34 पहला खोलेंगे आप, एक मिनट, इंग्लिश में पेज नंबर 34, हिंदी वालों में वो मिस्टेक नहीं है, केवल इंग्लिश में ही है, ये जो पेज है ना 34 क्वार्टाइल डेविएशन, यहां पर एक अंक लिखा है 25, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां जरूरी नहीं है कोई अंक की, इंग्लिश का पेज नंबर 34 हिंदी में नहीं है, वो भूल ही नहीं है, वहां नहीं है वो भूल, खाली इंग्लिश में ही है वो, ये 25 जो छपा हुआ है ना, आप सोचेंगे क्यों लिखा है यहां, क्यों लिखा है, दिमाग चलेगा काम का वेस्ट, उसके बजाय उसको क्रॉस ही कर दो, वो है ही नहीं, वो भूल से कहीं से 25 उड़ करके आ गया है वहां। अच्छा इंग्लिश वाले पेज नंबर 36, हिंदी वाले पेज नंबर 38, मीन डेविएशन की जो फॉर्मूला लिखी हुई है ना, इसमें जो खड़ी लकीर है ना ब्रैकेट के पहले भी ब्रैकेट के बाजू में, उसको एरो लगा के लिख दो मॉड्यूलस। अरे भाई आलोकन ना पड़े खबर, आपन तमने मन पड़े आलोकन ना पड़े, ये खड़ी लकीर क्या है, मॉड्यूलस जो प्लस एंड माइनस की साइन को इग्नोर करते हैं। केवल ये सीधी लकीर क्या है वो आपको मालूम हो, इसको पढ़ा कैसे जाता है, बोला क्या जाता है, उसका शब्द क्या है, मॉड्यूलस, ठीक है।